ईश्वर का भय एक संज्ञानात्मक भाषाई दृष्टिकोण। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। नीतिवचन 9:10। डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट द्वारा ईश्वर के भय पर एक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर दी गई शिक्षा है। ईश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। नीतिवचन 9:10। ईश्वर के भय या यिरात पर कुछ विचारों की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। एडोनाई पुराने नियम से और कुछ नए नियम से आता है, लेकिन ज्यादातर पुराने नियम में, विशेष रूप से नीतिवचन 9:10 में महान कथन की पृष्ठभूमि के रूप में परमेश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत है। तो अंत में हम ज्ञान की ओर एक झुकाव रखते हैं, लेकिन हमें ईश्वर के भय की व्यापक अवधारणा पर चर्चा करने की आवश्यकता है। और मैं आज भाषा विज्ञान में सामने आए एक नए उपकरण, जिसे संज्ञानात्मक भाषा विज्ञान कहा जाता है, का उपयोग करके ऐसा करना चाहूंगा। और इसलिए हम इसे एक प्रकार के फिल्टर के रूप में उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम ईश्वर के भय की इस अवधारणा को देखते हैं और देखते हैं कि यह हमें ईश्वर के भय पर कुछ नए दृष्टिकोण दे सकता है, जो ज्ञान, विशेष रूप से ज्ञान साहित्य में अत्यंत आधारभूत हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ईश्वर के भय को ज्ञान साहित्य का आदर्श वाक्य या वर्ग 1 या प्राथमिक उद्गम स्थल कहा गया है। इस लेख में संज्ञानात्मक भाषा विज्ञान का उपयोग करते हुए बाइबल के आंकड़ों की नए सिरे से जांच की जाएगी, जिसमें यह देखने की अपार संभावना है कि इस वाक्यांश के विविध अर्थ संबंध कैसे जुड़े हैं। ईश्वर के भय के विस्तृत विवरण के साथ ऐतिहासिक और भविष्य सूचक आख्यानों का अन्वेषण किया जाएगा। उसके बाद ज्ञान साहित्य में दिए गए संक्षिप्त कथनों पर विचार किया जाएगा। ईश्वर के भय की कई लेखकों ने परिभाषाएं दी हैं। कॉक्स इसे विवेक का एक रूप मानते हैं, जो ईश्वरीय व्यवस्था के सिद्धांत, जीवन की अच्छाई की अवधारणा और सफलता की गारंटी के प्रति बौद्धिक लगाव की मांग करता है। यह एक मनस्थिति है, कोई क्रिया नहीं। यह ज्ञान का लगभग पर्याय है, खासकर नीतिवचन के अध्याय 1-9 तक। टेरियन थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। टेरियन ईश्वर के भय का एक जटिल भावनात्मक अनुभव के रूप में अधिक विस्तृत वर्णन करते हैं, जो पवित्रता के बोध की अनुभूति से जुड़ा है, जो विकर्षण, आकर्षण, मोह, विस्मय, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, आस्था, उपासना और आराधना जैसी सहवर्ती प्रतिक्रियाओं से पहले आता है। फॉक्स 3 पर भय और ज्ञान को समान मानने से बचते हैं, और भावनात्मक भय और भय से धर्म और धर्मनिष्ठा की अमूर्त गुणवत्ता की एक अधिक नीरस अवधारणा की ओर एक रेखीय विकास की धारणा का भी व्यापक रूप से विरोध करते हैं। और यह माइकल फॉक्स और नीतिवचन की पुस्तक पर उनके महान कार्य से है। यहाँ एक अभ्यास दिया गया है, जो हमें ईश्वर के भय की अवधारणा से परिचित कराने में मदद कर सकता है, और हम इसकी तुलना ईश्वर के प्रकोप से करेंगे, और वास्तव में इसे ही सिंटैग्म कहते हैं। सिंटैग्म परस्पर क्रिया करने वाले संकेतों का एक व्यवस्थित संयोजन है, जो एक सार्थक समग्रता का निर्माण करता है। दूसरे शब्दों में, ईश्वर का भय, ये चीजें एक मुहावरा बन जाती हैं, या ये ईश्वर के भय और ईश्वर के क्रोध के व्यवस्थित संयोजन का एक मुहावरा है। परस्पर क्रिया करने वाले संकेतों का एक समूह जो एक सार्थक समग्रता का निर्माण करता है, हम इस पर गौर करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास एक छोटी सी चीज है जो ग्रीक और अन्य भाषाओं में आती है, वह है ईश्वर का भय। यह एक संबंधकारक प्रकार की रचना है, और इसकी तुलना परमेश्वर के क्रोध से कीजिए। उदाहरण के लिए रोमियो 1:18 में परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से सब अभक्ति और अधर्म पर प्रकट होता है। यह ईश्वर का क्रोध है, इसलिए हम इसे एक व्यक्तिपरक संबंधवाचक क्रिया कहते हैं, ईश्वर का क्रोध। तो ईश्वर का क्रोध, ईश्वर का क्रोध, ईश्वर एक विषय है। यह परमेश्वर का क्रोध है और फिर यह उन पर डाला जाता है जो अधर्मी और अधर्मी हैं, और उन पर भी आता है जो सत्य को दबाते हैं। ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं, परमेश्वर उन्हें रोमियों एक में त्याग देता है। तो परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध है। ईश्वर विषय है क्रोध, और फिर एक विषय भी होना चाहिए। ठीक है, उन पर जो अधर्मी हैं। ठीक है। तो जब हम ईश्वर का भय कहते हैं, तो हमें ईश्वर के क्रोध का क्रोध मिलता है। ईश्वर का क्रोध, ईश्वर विषय है क्रोध, वह है जो वह महसूस कर रहा है। तो फिर ईश्वर के भय का क्या? क्या ईश्वर का भय वह है जिससे ईश्वर डरता है? ईश्वर व्यक्तिपरक है? नहीं, नहीं, नहीं। ईश्वर का भय संबंध कारक का एक विषय है, अर्थात ईश्वर का भय। ईश्वर भय का विषय है, करता नहीं। इसलिए आपको यह समझना होगा कि यह संबंध कारक का विषय है, यह ईश्वर का भय है। यह भय ही है जो ईश्वर को विषय नहीं बल्कि विषय बनाता है। तो बस एक छोटा सा अंतर, यहां एक तरह की चंचल बात है। अब भय क्या है? और मैं आपको कुछ भय की स्थितियों के बारे में बताता हूं। डर क्या है? डर अच्छा है या बुरा? या फिर यह अस्पष्ट है? डर, मैं डर के बारे में सोचता हूं, अपनी बेटी के बारे में सोचता हूं जब वह छोटी थी। मैं उसे स्कूल पैदल ले जाता था। मैं उसे जेफरसन एलिमेंट्री स्कूल तक पैदल ले जाने की एक वजह यह थी कि जब वह वहां पहुंची तो मुझे लगता है कि वह असल में एक ड्रग डीलर था और उसने एक तरह की तार की बाड़ लगा रखी थी और इस चेन लिंक बाड़ के पीछे एक बड़ा कुत्ता था, एक बड़ा काला कुत्ता। मुझे लगता है कि वह शायद कोई डॉबरमैन पिंसर या रोटवीलर या ऐसा ही कुछ था। मेरी बेटी स्कूल जाते हुए उस घर के पास से गुजरती थी और वह कुत्ता बाहर आकर अपनी नाक और थूथन सीधे बाड़ में घुसा देता था और भौंकता रहता था और लगभग तैयार रहता था कि अगर वह बाहर निकल गया तो उसे मार डालेगा। मुझे खुशी थी कि ऐसा नहीं हुआ। खैर, एक तरह से वह डरी हुई थी और उसे उस कुत्ते से डर लगता था जो उस पर हमला कर सकता था। इसलिए पापा उसे स्कूल तक छोड़ने जाते थे और पापा, जाहिर है, कुत्ते की देखभाल भी करते थे अगर कुछ हो जाए तो। तो ये एक तरह का डर था, शेर का डर या ऐसा ही कुछ। डर के कई प्रकार। डर अच्छा है, आप जानते हैं, डर, भागना और भी बहुत कुछ। डर आपको खतरे से भागना सिखाता है और इसलिए जिस तरह का डर उसे कुत्ते के साथ महसूस हुआ, वैसा ही डर मैंने खुद के साथ भी महसूस किया। और असल में मेरे जीवन काल में यह बदल गया है और इस तरह अब जहां हम हैं वहां मेरा एक घर है और घर के शिखर पर मुझे ऊपर जाकर उसे रंगना था और घर का शिखर ऊपर था, मेरे पास 40 फुट ऊंची सीढ़ी थी और इसलिए मैं घर की दीवार पर 40 फुट ऊंची सीढ़ी लगा देता था और मैं सीढ़ी पर तेजी से चढ़ता था। फिर सीढ़ी के सबसे ऊपरी पायदान पर मैं कुछ सीढ़ियों पर खड़ा हो जाता था क्योंकि ऊपर पहुंचने के लिए शायद 45 से 50 फुट की चढ़ाई करनी पड़ती थी। तो यह असल में सीढ़ी के विस्तार से भी आगे तक जाता था और इसलिए जब मैं छोटा था तो मैं अपने एक बेटे से सीढ़ी पकड़वाता था ताकि सीढ़ी फिसले नहीं और कुछ गड़बड़ न हो, और मैं ऊपर जाकर उस ट्रिम को पेंट कर देता था जिसे पेंट करने की जरूरत थी। और इसलिए जब मैं छोटा था मुझे ऊंचाई वगैरह का कोई डर नहीं था। मैं अक्सर न्यू इंग्लैंड में हमारे घर में नॉर्थईस्टर्स नाम की हवाएं चलती रहती थी, जिन्हें नॉर्थईस्टर कहते हैं, जहां से हवाएं आती हैं और ये समुद्र से आती हैं और इनकी गति बहुत तेज होती है, जैसे 60 से 70 मील प्रति घंटे की हवाएं। और मेरी छत कभी ठीक से सील नहीं हुई बनने के बाद से ही। और इसलिए जो होता था वो ये कि छत के छप्पर उड़ जाते थे। और इसलिए मुझे लगभग हर साल छत पर जाना पड़ता था और फिर उन पर कीलें ठोकनी पड़ती थीं, उन पर फिर से कीलें ठोकनी पड़ती थीं जो उड़ गई थीं या ऊपर आ गई थीं या जो भी हो। और इसलिए मुझे ऊपर जाकर छत पर रेंगना पड़ता था। और आप जानते हैं, जब आप छत बना रहे होते हैं, तो मैं छत को पहचानने का एक आसान तरीका यही होता है। अगर आप अपना हथौड़ा छत पर फेंकते हैं और वह फिसल जाता है, तो आपकी छत खड़ी है और आपको बहुत सावधान रहना होगा। दूसरी छतें भी हैं, जैसे जब मैं विनोना लेक, इंडियाना में था, तो मैंने अपना हथौड़ा छत पर फेंक दिया और कोई समस्या नहीं हुई। वहाँ एक हथौड़ा है और आप वहीं खड़े रहते हैं, आप उस छत पर घूम सकते हैं, लौट सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ न्यू इंग्लैंड में छतें बहुत खड़ी हैं, छतें और भी ज्यादा खड़ी हैं। और इसलिए जब आप हथौड़ा ऊपर फेंकते हैं तो वह वापस नीचे आ जाता है, जिससे आपको पता चलता है अरे हो सकता है आप फिसल जाएं और छत से जमीन पर 19 फुट की ऊंचाई से गिरें, आपको चोट लग जाएगी। और खैर हमने वहां सीढ़ी लगा दी और मैं ऊपर जाकर छत की छत पर कील ठोकता था। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि आप जानते ही हैं, मेरा एक बेटा था जो मेरे लिए सीढ़ी पकड़ता था और ऐसे ही काम करता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैं खुद पर शक करने लगा। और अचानक एक साल हमारे यहाँ तेज हवा चली और घर के ऊपरी हिस्से पर लगे लगभग 8 फीट के छप्पर उड़ गए। इसलिए मुझे ऊपर जाकर घर की छत पर बैठना पड़ा, उस पर पैर रखकर छप्परों को कील से ठोंकना पड़ा। कुछ छप्पर तो उल्टे ही वापस लगा दिए गए। तो मैंने छत पर तख्ती लगा दी, लेकिन मैं, आप जानते हैं, छत पर बैठा हुआ था, लेकिन मैं असल में नीचे देख रहा था। और मैं ऐसा कर रहा था और अचानक मुझे एहसास हुआ, पहली बात, अब मेरी सीढ़ी पकड़ने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अब हम खाली घोंसले वाले हो गए हैं। और मेरे सारे बेटे चले गए थे, मेरे बच्चे भी चले गए थे, और इसलिए सिर्फ मैं ही था। मेरी पत्नी काम पर चली गई थी और तो वहां सिर्फ मैं ही था। और मुझे एहसास हुआ, हे भगवान, अगर मैं इस चीज से गिर गया तो मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है, न छत है न सीढ़ी है, बस मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। और अचानक फिर क्या होता है कि आप बड़े हो जाते हैं, आप खुद पर शक करने लगते हैं। और अचानक मुझे एहसास हुआ, हे भगवान, ये तो खतरनाक है। और अचानक जिंदगी में पहली बार मुझे लगता है कि मुझे ऊंचाई से डर, डर और डर लगने लगा। और यही बात तब भी हुई जब हम एक बार स्पेन गए थे और मैं और मेरे दामाद बार्सिलोना के बाहर एक अद्भुत मठ में थे। और हम उस जगह पर पहुंचे जहां से लगभग 2000 फुट की सीधी ढलान थी बिल्कुल नीचे, और आप इसके किनारे तक चल सकते थे और आप सीधे नीचे देख सकते थे। और यह अचानक ऐसा था, आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे यार एक और कदम और हम चल पड़े, और किनारे से एक कदम पीछे हटना मुश्किल था क्योंकि आपको एहसास हुआ कि वहां बहुत लंबा रास्ता है। और इसलिए ऊंचाई का डर, लोगों को कई तरह के डर होते हैं, डर अच्छे डर भी हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा, जिंदगी भर बदलते रहते हैं, बचपन में जो डर लगता है बड़े होने पर अलग अलग डर आकार लेते हैं। तो मकड़ियों जैसे डर, कुछ लोग मकड़ियों से डरते हैं, मेरी बेटी को मकड़ियों से डर लगता है। हमारे परिवार में एक रस्म होती थी जिसमें पिताजी आते थे और मकड़ी को मार देते थे और फिर मकड़ी और दूसरी चीजों के साथ घर में उसका पीछा करते थे, और इसलिए वहां मकड़ियों का डर था। तो डर के अच्छे, बुरे और बदसूरत होने के बावजूद डर अच्छा है। जब आपको ऊंचाई से डर लगता है और आपको शायद ऊंचाई से डरना चाहिए जब आप अकेले काम कर रहे हो या कोई कुत्ता आप पर हमला कर सकता हो या ऐसा कुछ। अपनी कार में बहुत तेज गाड़ी चलाना या ऐसा कुछ। कुछ अच्छे डर होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे डर भी होते हैं जो लगभग बेतुके होते हैं और आपको सावधान रहना होगा। तो अच्छा, बुरा, बदसूरत, डर और डर व्यवहार से ज्यादा एक मकसद है। फिर आप पीछे हट जाते हैं, आप पीछे हट जाते हैं, आप अब दादफसाद नहीं करते वगैरह। तो बस डर की कुछ धारणाएं, डर की भावना की प्रकृति पर काफी अध्ययन हुआ है। अब मैं एक तरह का अवलोकन चार्ट पेश करना चाहता हूं, और यह चार्ट ईश्वर के भय के अर्थों की विविधता को दर्शाएगा, और इसलिए अर्थों की विविधता, और इसलिए मैं अभी इस पर चर्चा करना चाहता हूं, और फिर हम आगे चलकर इनमें से प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करेंगे और अंत में इन सभी को एक अंतिम चार्ट में संकलित करेंगे। लेकिन यह एक परिचयात्मक अवलोकन में भय के अर्थों की एक तरह की बुनियादी प्रारंभिक विविधता मात्र है। तो एक प्रकार का भय होता है, मैं कहूंगा कि यह आतंक का भय है, और यह ऊपर जाने और ऊंचाई से डरने जैसा है या ऐसा ही कुछ। बस इस बार इसे मिस्टीरियम कहा जाता है, जबरदस्त, और यह रुडोल्फ ओटो नाम के एक व्यक्ति की देन है जिन्होंने द आइडिया ऑफ द होली नामक एक किताब लिखी है, और इस तरह उन्होंने पवित्रता और भय के विचार को और इस अद्भुत अद्भुतता को जो ईश्वर की इतनी महानता को दर्शाती है जोड़ा है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं ईश्वर की तस्वीर देखता है तो वह पूरी तरह से अचंभित हो जाता है। वो इंसान वाकई कमाल का है। बस ये बहुत जबरदस्त है, शायद इसे कहने का कोई और तरीका भी हो। ये कुछ ऐसा ही है जैसे जब कोई चीज बहुत ही शानदार होती है तो वो आपको और बाकी चीजों को अभिभूत कर देती है, और इसलिए यह रहस्य होगा एक जबरदस्त किस्म का डर, और यह आतंक से जुड़ा है। और आज बहुत से लोग और हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है, जब भी वे ईश्वर का भय सुनते हैं तो कहते हैं, ओह, इसमें ईश्वर का भय लिखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है। इसका असल मतलब है श्रद्धा और आदर। और मैं कहना चाहता हूं कि नहीं, बाइबल में ऐसे कई स्थान हैं जहां ईश्वर के भय का अर्थ रहस्य है। जोरदार, ईश्वर की अद्भुतता, भय, आतंक, कापना, ठीक है, ऐसी ही बातें। इसलिए सावधान रहें कि लोग इसे कम करके न आकें, ईश्वर का भय कहने की कोशिश करें, लेकिन हमारा यह मतलब नहीं है। और वे एक यूहन्ना 4 से कुछ अंश उद्धृत करेंगे जिस पर हम कुछ ही मिनटों में विचार करेंगे। खैर, इससे सावधान रहें। इस रहस्य में भय, 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 ईश्वर के सच्चे भय के लिए भी जगह है। जबरदस्त भावना। ईश्वर का भय भी एक तरह के नैतिक संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर व्यवस्था में किया जाता है, और इसमें ईश्वर का भय शब्द भी शामिल है, जिसका अर्थ अक्सर वाचा संबंधी आज्ञाकारिता भी हो सकता है। और ऐसा होता है कि व्यक्ति ईश्वर का भय मानता है। यह वाचा या आज्ञाकारिता से जुड़ा हुआ होगा, जहां वास्तव में ईश्वर के भय शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन वास्तव में यह उनकी आज्ञाकारिता का संदर्भ दे रहा है। कुछ पंथीय अंशों में जहां यह इसराइल के पंथ, बलिदानों, मंदिर आदि के बारे में बात करता है, इसका अर्थ अक्सर आराधना होता है। इसलिए ईश्वर के भय का अर्थ आराधना या विस्मय हो सकता है। और फिर व्यक्ति विस्मय, श्रद्धा और आराधना के साथ ईश्वर की उपस्थिति में आता है। और अब बहुत से लोग इसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और यह धार्मिक संदर्भ में उपयुक्त है, इसका अक्सर यही अर्थ होता है। ज्ञान साहित्य में यह अक्सर सद्गुण या चरित्र के विचार से जुड़ जाता है, और इसलिए इसमें ईश्वर का भय है। और इसलिए ईश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत है, इस तरह का विचार। यह ज्यादातर सद्गुण और चरित्र से जुड़ा विचार है। इसके अलावा भय और दंड का विचार भी है। और फिर भय की यह धारणा है, मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी ऐसा महसूस किया होगा, कम से कम शायद हाल ही में उतना नहीं। लेकिन मैं बड़ा हो गया हूँ और अब बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे पिता एक सख्त अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वैसे इससे मुझे जिंदगी भर बहुत फायदा हुआ। लेकिन उनके पास एक चीज थी, हम, मैं और मेरा भाई और मेरे पिताजी बाहर जाकर मेंढक पकड़ने का काम करते थे। और 1930 के दशक की आर्थिक मंदी के दौरान उन्हें बाहर जाना पड़ा और खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, इसलिए वे दलदल में जाकर मेंढकों के सिर पर एक ऐसी चीज से वार करते थे जिसे मेंढक चप्पू कहते थे। यह ओक की लकड़ी से बना था और लगभग उतना ही चौड़ा, लगभग उतना ही लंबा था और इसमें एक हैंडल भी था। और जब मेंढक उछलकर बाहर आता तो आप उसके सिर पर वार करते, एक तरह से वैकई मोल जैसा। और फिर आप मेंढकों को घर लाते, उन्हें एक ऐसे कमरे में रखते जहां उसने अपनी पैंट से एक पैर काट लिया था वगैरह। और तुम वहां मेंढक रख देते, हम घर आते, खाते, हमारे पास मेंढक की टांगे होती थीं, चिकन जैसा स्वाद। खैर, हम मेंढक की टांगे खाते थे और मेरे पिताजी ने यह करना सीखा था, और इसलिए यह मेंढक चप्पल हमेशा चलता रहता था। अब उनका निधन हो गया है, दरअसल उन्हें गए हुए 20 साल हो गए हैं। और मेरे भाई, हम, आप जानते हैं, मेरे माता पिता से मिली सारी चीजें बांट रहे हैं वगैरह। और फिर मेरा भाई कहता है, अरे टेड, क्या तुम्हें मेंढक वाला चप्पू चाहिए? मेंढक वाला चप्पू हमेशा बगल में होता था और मेरे पिताजी जब अनुशासन सिखाते थे तो चप्पू हमेशा वहीं होते थे। मैं और मेरा भाई दोनों जानते थे कि हम अपने नितंबों पर चप्पू नहीं लगवाना चाहते, इसलिए हम ऐसा करते थे क्योंकि इससे हमें डर लगता था कि हम गलत व्यवहार करेंगे, और ऐसा होता भी था। लेकिन ऐसा हमेशा होता था और उसने कभी भी इसका या किसी और चीज का इस्तेमाल हम पर वगैरह पर नहीं किया। हालांकि हम इसका इस्तेमाल बहुत सारे मेंढकों पर करते हैं। और खैर, वो चप्पू तो मेरे पास नीचे चप्पू है, बस एक तरह से मुझे बड़े होने की याद दिलाता है और उससे पैदा होने वाला डर मुझे कुछ मायनों में सीधे और संकीर्ण रास्ते पर रखता था। तो सजा का डर बाइबल में भी है, और हम ईश्वर से इसलिए डरते हैं क्योंकि वह सजा देने वाला है और हम सजा नहीं चाहते। नम्रता, श्रेष्ठापन और धर्मप्रायणता, यह एक और बात है जहां इंसान को एहसास होता है कि वह एक प्राणी है, और ईश्वर का भय इंसान को तब विनम्र बनाता है जब उसे अपनी बेपसी का एहसास होता है। यह मेरी बेटी की तरह है, वह उस बड़े कुत्ते से खुद को बचाने में लाचार है, और इस तरह असहायता का यह विचार एक प्रकार की विनम्रता को जन्म देता है और विनम्रता या सृष्टित्व का बोध होता है। वह ईश्वर है, वह ब्रह्मांड में अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं है, और हम इंसान हैं, हम प्राणी हैं, और इसलिए यह हमें धर्मप्रायणता की ओर ले जाता है। पंथ का पालन, जैसा कि हमने पहले कहा, एक और बात है, बस पंथ ईश्वर द्वारा दिए गए नियमों और विधियों का पालन करना। कभी कभी यह उन नियमों के स्थान पर ईश्वर के भय का प्रयोग करता है, और फिर अंततः ईश्वर भीरु नामक एक समूह बन जाता है, और ये ईश्वर भीरु लोग वास्तव में ईश्वर के सभी भयों का नाम नहीं हैं। पवित्र शास्त्र में कई बार जब ईश्वर का भय शब्द का प्रयोग होता है तो इसका तात्पर्य विदेशियों से होता है, ऐसे विदेशियों से जो ईश्वर का भय मानते हैं। उनका एक सामान्य नैतिक चरित्र होता है कि वे ईश्वर का भय मानते हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर भक्त कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे वाचा समुदाय के सदस्य हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे आप जानते हैं, लेकिन वे ईश्वर का भय मानते हैं। इसका अर्थ है कि वे नैतिक लोग हैं, वे नैतिक लोग हैं, वे अच्छे लोग हैं। और वैसे भी इसका इस्तेमाल तो होगा ही। तो ईश्वर का भय ईश्वर भक्तों के लिए, इसराइल के बाहर, वाचा से बाहर के नैतिक लोगों के लिए एक पदनाम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बस कुछ सामान्य श्रेणियां हैं, और हम इनमें से प्रत्येक पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस प्रस्तुति के अगले भाग में इसे और अधिक विकसित करेंगे। अब मैं संज्ञानात्मक भाषा विज्ञान के संदर्भ में इसकी कुछ भाषाई पृष्ठभूमि की प्रस्तुति से शुरुआत करूंगा। मेटोनिमी क्या है और मैं क्यों मानता हूं कि ईश्वर के भय को समझने के लिए मेटोनिमी हमारी कुंजी है। मेटोनिमी एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग और विचार अक्सर केवल एक अलंकार, एक अलंकारिक युक्ति, एक साहित्यिक रूपक, एक नाम के स्थान पर दूसरे का प्रयोग, एक नाम के स्थान पर दूसरे का प्रयोग के रूप में किया जाता है। और इसलिए हमें ऐसी चीजें मिलती हैं, जैसे कि आपको चीजों को जोड़ने में सावधानी बरतनी होगी, ईश्वर का भय, भय और ईश्वर को एक साथ रखना। बस अब हम जानते हैं कि ईश्वर का भय क्या है। अब चीजें उस तरह से जोड़ने वाली नहीं हैं। और मेटोनिमी हमें कुछ विकास प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, जब आप चीजों को एक साथ जोड़ते हैं तो आपको सॉफ्ट प्लस बॉल मिलता है। सॉफ्ट बॉल वह है जिसमें आप गेंद को एक साथ जोड़ते हैं। एक बड़ी पुरानी सॉफ्ट बॉल ज्यादा नरम गेंद होती है और इसीलिए इसे सॉफ्ट बॉल कहते हैं। आपके पास एक डोरबेल है और ये घंटी आपके दरवाजे के पास लगी है, तो ये एक डोरबेल है। ठीक है, ये सब एक साथ जुड़ जाते हैं। एक बेडरूम या एक कमरा जिसमें बिस्तर हो और वहीं आप सोते हैं। ठीक है, जन्मदिन तो जन्म होता है, और यह एक ऐसा दिन है जिस दिन आपका जन्म हुआ था जिसे आप मनाते हैं। दरअसल अब हमारे बच्चे जन्म के सप्ताहों में ही जन्म लेते हैं। और खैर, वैसे भी आपको शब्दार्थ के प्रति योगात्मक दृष्टिकोण के बारे में सावधान रहना होगा। यह कभी कभी काम नहीं करता। खैर, हो सकता है आपका जन्मदिन हो। अच्छा, मुझे बताओ कि मक्खन प्लस मक्खी यानी तितली क्या होती है। जब आप तितली के बारे में सोचते हैं तो क्या आपको मक्खन और मक्खी का ख्याल आता है? क्या ये दोनों एक साथ नहीं चलते? अनानास चीड़ और सेब का मिश्रण है और इन्हें एक साथ रख दो। मुझे नहीं लगता। आपके पास ब्लूबेरी है और आपके पास ब्लैकबेरी है, लेकिन फिर आपके पास स्ट्रॉबेरी है, और इसलिए आप देख सकते हैं कि पहले दो बेरी ब्लूबेरी ब्लैकबेरी का रंग बताते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं तो आप कहते हैं, अरे वाह, स्ट्रॉ कैसा दिखता है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके बेरी जैसा नहीं दिखता। हालांकि आजकल किराने की दुकानों में मिलने वाले ज्यादातर बेरीज का स्वाद कार्डबोर्ड जैसा होता है, शायद स्ट्रॉ जैसा, लेकिन वे लाल होने चाहिए। ठीक है, हालांकि अब वे अलग अलग तरह से उग रहे हैं। तो संज्ञानात्मक प्रकृति, मैं यहां जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि मेटोनिमी सिर्फ एक अलंकार नहीं है। यह कोई अलंकारिक उपकरण नहीं है जिसे यूं ही व्यंग्य या ऐसा ही कुछ कहने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। यह कोई अतिशयोक्ति, जोर देने के लिए अतिशयोक्ति, व्यंग्य, दोहराव, व्यंग्य, कभी कभी पूर्वाभास के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अलंकार, एक और प्रकार का अलंकार नहीं है, जहां मिस्र से किसी और का संकेत हो, जैसे मत्ती के वाक्यों से मैंने अपने बेटे का नाम रखा है। पुराने नियम में सभी प्रकार के वाक्य हैं, खासकर भविष्यवक्ता बहुत ही व्यंग्यात्मक थे। समावेशन और समावेशन अक्सर एक अलंकारिक उपकरण होते हैं जिसके जरिए वे किसी चीज की शुरुआत और अंत एक ही चीज से करते हैं। कुछ लोग इसे बुकेंड्स कहते हैं, लेकिन वे किसी चीज की शुरुआत करते हैं और फिर उसी तरह की चीज पर खत्म करते हैं। इसे इंक्लूसियो या समावेशन बुकेंड्स कहते हैं। और फिर उनमें चियास्मस भी होता है, जो हर जगह होता है, और पुराने जमाने में चियास्म पर एक बड़ी चीज होती थी, जहां आपके पास एक ए तत्व होता था, उसके बाद एक बी तत्व, उसके बाद एक बी अभाज्य तत्व, उसके बाद एक अभाज्य तत्व। और अगर आप ए और बी को देखें, तो यह एक एक्स बनाता है, जैसे अंग्रेजी में एक्स, जिसे ग्रीक में कुंजी कहते हैं, और इसे चियास्म कहते हैं। ठीक है, पहला तत्व और आखिरी तत्व मेल खाते हैं, और दूसरा तत्व और तीसरा तत्व मेल खाते हैं, और इसलिए यह एक तरह का बी अभाज्य, ए अभाज्य और एक्स जैसा होता है, जिसे चियास्म कहते हैं। पुराने नियम और अन्यत्र ऐसे लाखों उदाहरण हैं, और आपको इनका अतिशयोक्ति से बचना होगा। मैं यहाँ यह कहना चाहूंगा कि जब मैं कहता हूँ कि ईश्वर का भय एक लक्षण अलंकार है, तो मेरा आशय किसी अलंकार से नहीं है। संज्ञानात्मक भाषा विज्ञान ने हमें कुछ खास तरीके सिखाए हैं, जिनसे हमारा दिमाग भाषा के बारे में सोचता है। अब समस्या यह है कि अगर दुनिया की हर चीज के लिए एक शब्द हो, अगर आपके पास एक शब्द हो, तो वह एक तरह से एक होगा। ठीक है, लोगों को यह पसंद है, क्योंकि यह, आप जानते हैं, सचमुच एक से एक है। अगर आपके पास दुनिया की हर वस्तु, हर चीज या हर व्यक्ति के लिए एक शब्द होता, तो आपके पास जानने के लिए अरबों शब्द होते। और इसलिए होता यह है कि भाषा उससे कहीं ज्यादा कारगर होती है। और इसलिए आपके पास एक कार है, और फिर आपके पास अलग अलग तरह की कारें हैं, टेस्ला और टोयोटा। और फिर टोयोटा कारों में भी आपको पता है, RAV4, कैमरी और SUV, अलग अलग तरह की कारें मिलती हैं, यहाँ तक कि उस श्रेणी में भी। तो अक्सर हम चीजों को इस तरह की भाषा में ढाल देते हैं। तो भाषा, मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि रूपक कोई अलंकार नहीं है, और संज्ञानात्मक भाषा विज्ञान में रूपक और रूपक एक साथ चलते हैं। और इसलिए हम देखेंगे कि रूपक रूपक विशेषण से बहुत अलग होते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको रूपक विशेषण का एक उदाहरण देता हूँ। रूपक विशेषण तब होता है जब एक शब्द का प्रयोग किसी और चीज को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। गिनती अध्याय 24 श्लोक 17 में लिखा है, याकूब से एक राजदंड उठेगा, याकूब से एक राजदंड उठेगा। अब जब राजदंड शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो क्या इसका अर्थ वास्तव में राजदंड है या राजदंड राजा का प्रतिनिधि? याकूब से एक राजा उठेगा। अब जब याकूब कहता है, तो क्या इसका अर्थ वास्तव में याकूब और एसाव है, जैसा कि आप जानते हैं, उत्पत्ति और अन्य पुस्तकों में वर्णित लोग? नहीं, जब याकूब कहता है और संख्या 22 से 24 में बालाम बोल रहा है, जब बालाम कहता है याकूब से एक राजदंड उठेगा, तो उसका अर्थ है कि याकूब इसराइल का प्रतिनिधि है। तो एक शब्द दूसरे के लिए इस्तेमाल होता है। तो याकूब असल में इसराइल का जिक्र कर रहा है, और राजदंड असल में राजा का जिक्र कर रहा है। संज्ञानात्मक भाषा विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग इसी तरह काम करता है। दो तरह से हमारा दिमाग अरबों शब्दों को सीखने से रुक जाता है, और वो है, हम भाषा को विस्तार देने के लिए रूपक और लक्षणालंकार का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं इनमें से कुछ बातों पर गौर करता हूँ। रोमन जैकबसन ने रूपक और रूपक विषमता पर एक लेख में रूपक विषमता को दो ध्रुवों में से एक बताया है। रूपक एक ध्रुव पर हैं, और सोचने का पूरा तरीका मानसिक श्रेणियों में प्रतिमानात्मक प्रतिस्थापन और मानचित्रण पर आधारित है। मैं बाद में इस पर वापस जाऊंगा कि यह क्या है। रूपक दूसरे ध्रुव पर है। दूसरे ध्रुव पर रूपक है। तो रूपक श्रेणियों के बीच का मानचित्रण है। मेटोनिमी मेटोनिमी श्रेणियों के भीतर मानचित्रण है, एक तरह की ज्यादा सन्निहित चीज। अब मैं बताता हूं कि इससे मेरा क्या मतलब है। उदाहरण के लिए रूपक, आइए यहां थोड़ा रूपकों के साथ खेलें। तो हम कहते हैं प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। यह एक रूपक है। हम ईश्वर को पुकार रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे कि ईश्वर एक चरवाहा है। हम कह रहे हैं कि ईश्वर एक चरवाहे की तरह है। मुझे पता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वह मुझे हरी भरी चरागाहों में सुलाता है। हालांकि न्यू इंग्लैंड में अप्रैल में बर्फबारी हो रही है, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। खैर खैर, वह मुझे हरी भरी चरागाहों में सुला देता है। ठीक है प्रभु, या भजन संहिता के पहले अध्याय में वह एक पेड़ जैसा होगा। अब यह बहुत दिलचस्प है, एक इंसान और एक पेड़ के बीच का यह संबंध। इंसान पेड़ जैसा कैसे है? खैर, उसके पास एक तना है, हमारे पास अंग हैं, हमारी जड़ें हैं। ठीक है, और इसलिए कई अर्थ हैं, आप इससे कई रूपक बना सकते हैं, इंसान एक पेड़ जैसा है। ठीक है, और उसमें पत्ते भी हैं। ठीक है, लेकिन खैर वह पानी की नदियों के किनारे लगाए गए पेड़ जैसा होगा। ठीक है, यह रूपकात्मक भाषा है। यह एक ही श्रेणी का मानचित्रण कर रहा है, पेड़ वास्तव में इंसानों जैसे नहीं होते। तो ये दो अलग अलग अर्थगत श्रेणियां हैं। पौधों में एक पेड़ है, तो इंसान भी पौधों जैसा ही है। वो पौधों जैसा कैसे है? जैसे घास सूख जाती है और मुरझा जाती है, तो इंसान लुप्त हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास एक ही श्रेणी में कई पौधे हैं, तो आपके पास ऐसे पौधे हैं जिनकी तुलना इंसानों से की जाती है, लेकिन ये तो अलग अलग श्रेणियां हैं। वह एक पेड़ की तरह है, वह पानी की धाराओं के किनारे लगाए गए उस पेड़ की तरह कैसे है जो एक मौसम में फल देता है। और इस तरह आपको फल और चीजों का यह विचार मिलता है कि वे पेड़ और इंसान के बीच दो अलग अलग श्रेणियों में बंटी हुई हैं। अब यही तो रूपक है। दूसरी ओर भजन संहिता वैसे बहुत ही रूपकात्मक है। वह एक पेड़ की तरह होगा। ठीक है, भजन संहिता में बहुत ही लाक्षणिक रूप से कहा गया है, वह एक पेड़ की तरह होगा। ठीक है, भजन संहिता में बहुत ही लाक्षणिक रूप से कहा गया है, वह एक पेड़ की तरह होगा। ठीक है, भजन संहिता में बहुत ही रूपकात्मक, वह एक पेड़ के समान होगा। ठीक है, भजन संहिता में बहुत ही रूपकात्मक, वह एक पेड़ के समान होगा। ठीक है, भजन संहिता में बहुत ही रूपकात्मक, वह एक पेड़ के समान होगा। ठीक है, भजन संहिता में यह बहुत ही लाक्षणिक है, वह एक पेड़ के समान होगा। ठीक है, मैं एक मनुष्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ, और मनुष्य जैसा मैं बनूंगा, और पेड़ मेरे प्रभु के समान मेरा चरवाहा है। नीतिवचन और ज्ञान साहित्य में यह एक प्रकार की बात है, यह ज्यादातर रूपकात्मक है, लेकिन यह आलसी के परिश्रमी हाथ के समान है। ठीक है, अब क्या यह सचमुच कह रहा है कि आपको मेहनती हाथ या मेहनती हाथ बनाम आलसी, मेहनती हाथ बनाम आलसी के बारे में सावधान रहना होगा? आलसी एक व्यक्ति है, मेहनती हाथ, जब आप मेहनती हाथ का जिक्र करते हैं तो आप असल में मेहनती व्यक्ति का जिक्र कर रहे होते हैं, और काम करने के लिए अक्सर हाथ का ही इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह मेहनती एक तरह से हाथ उस व्यक्ति मेहनती व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तुम्हारे पास दुष्टों का मुंह है, दुष्टों का मुंह। इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा, तुम्हें उस मुंह को अपने मुंह से हटाना होगा। यह सिर्फ मुंह की बात नहीं है, मुंह दुष्टों का प्रतिनिधि है, जो अक्सर अपनी दुष्टता के लिए मुंह का इस्तेमाल करता है। और इसलिए इस प्रकार की चीजें एक लक्षणालंकार हैं। ध्यान दें कि मुंह व्यक्ति से जुड़ा है और मेहनती का हाथ व्यक्ति से जुड़ा है। और इसलिए यह श्रेणियों के पार नहीं है, यह श्रेणियों के भीतर है, नीचे सटे हुए श्रेणी के नीचे एक व्यक्ति का हाथ है, एक व्यक्ति का मुंह है। ये सब एक ही श्रेणी में आते हैं। रूपक वह नदियों के किनारे लगाए गए पेड़ की तरह है। वह एक व्यक्ति सभी श्रेणियों में एक पेड़ की तरह है। मेटोनिमी एक तरह से श्रेणियों में विभाजित है, जिन्हें सिनेकडोक कहा जाता है, और वास्तव में मेटोनिमी एक साधारण सिनेकडोक की तुलना में कहीं अधिक जटिल दिखाई देगा, यानी एक पूरे के लिए एक भाग। आप दुष्टों का मुंह देखते हैं, ठीक है, या मेहनती लोगों का हाथ, ठीक है। तो मेटोनिमी एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसमें एक वैचारिक इकाई या माध्यम, एक वैचारिक इकाई लक्ष्य तक मानसिक पहुंच प्रदान करता है। तो मेहनती का हाथ असल में संदर्भ दे रहा है, यही वह माध्यम है जो मेहनती व्यक्ति के लक्ष्य को दर्शाता है। तो आपके पास एक माध्यम है, यानी मेटोनिमी लक्ष्य को दर्शाता है, ठीक है। और इसलिए मेहनती का हाथ मेहनती को दर्शाता है, दुष्ट का मुंह दुष्ट को दर्शाता है, ठीक है। तो एक वाहन और एक लक्ष्य है, एक वाहन और एक लक्ष्य, ठीक है। अब रूपक, ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। मेरे यहाँ एक व्यक्ति है जो बहुअर्थी या रूपक के अनेक अर्थों के बारे में बात करता है, और यह भी कि वास्तव में ये कितने बहुमुखी हैं। तो वह कहते हैं, स्कूल शब्द के बारे में क्या ख्याल है? आप सभी जानते हैं कि स्कूल का क्या मतलब होता है ना? ठीक है, स्कूल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? एक रूपकात्मक अर्थ में स्कूल के कई अर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए डिरवेन बताते हैं कि उन्हें छुट्टी पाने के लिए स्कूल खत्म होने तक इंतजार करना होगा। यहाँ स्कूल का क्या मतलब है? उन्हें छुट्टी पाने के लिए स्कूल खत्म होने तक इंतजार करना होगा। खैर, वहाँ स्कूल का मतलब स्कूल वर्ष है। तो स्कूल शब्द असल में स्कूल वर्ष को दर्शाता है, वह समय जब आपको छुट्टियां मिल सकेंगी। अब यह कहने से अलग है कि उसे स्कूल से दूर रहना चाहिए, उसे अब किसी भी स्कूल से दूर नहीं रहना चाहिए, वरना वह फेल हो जाएगा। उसे अब स्कूल से दूर नहीं रहना चाहिए। अब ये कैसा स्कूल है? स्कूल तो कक्षा में पढ़ाई के लिए होता है। बेहतर होगा कि तुम कक्षा में पढ़ाई से दूर न रहो और कक्षा में जाओ, वरना तुम फेल हो जाओगे। तो आप जानते हैं, पहला स्कूल एक स्कूल वर्ष था। यह स्कूल है, यानी निर्देश, यानी निर्देश। और फिर तीसरा, रॉबिन को स्कूल को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। रॉबिन को स्कूल को एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। अब यह स्कूल बोर्ड हो सकता है, और यह स्कूल को संदर्भित करता है, स्कूल का मतलब स्कूल बोर्ड है। एक शब्द दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक साधन दूसरे शब्द को लक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह है स्कूल बोर्ड। और स्कूल बोर्ड कहने के बजाय आप बस स्कूल कहते हैं और फिर आप संदर्भ देते हैं। ये दोनों श्रेणियां एक ही स्कूल श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इन्हें एक दूसरे से सटाकर रखा गया है। स्कूल इस साल कोई वेतन वृद्धि नहीं देगा। स्कूल इस साल कोई वेतन वृद्धि नहीं देगा। अब स्कूल यानी कार्यपालिका, यानी आपका प्रशासन और आपका बोर्ड स्कूल को कोई वेतन वृद्धि नहीं दे रहा है। तो इस तरह स्कूल यानी प्रशासन, प्रशासन कोई वेतन वृद्धि नहीं दे रहा है, लेकिन वे इसे स्कूल कहते हैं। तो इस तरह की बातें। हम चाय या बिस्तर जैसे शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सोने जा रहा हूं।
ठीक है।
अब बिस्तर पर जाने का क्या मतलब है?
बिस्तर का मतलब क्या है?
खैर, बिस्तर का मतलब बस इतना है कि मैं बिस्तर पर जा रहा हूं, यानी मैं सोने जा रहा हूं।
ठीक है।
तो मैं बिस्तर पर जा रहा हूं, मतलब मैं सोने जा रहा हूं। अब एक और संदर्भ, और मैं शादीशुदा हूं वगैरह, और मैं कहती हूं कि मैं सोने जा रही हूं, शायद सेक्स के लिए अनुरोध या ऐसा ही कुछ। या हो सकता है कि मैं सोने जा रही हूं, और या क्योंकि मैं बीमार हूं, मुझे एक दो बार कोविड हो चुका है, और आप जानते हैं, मैं बीमार हूं। मैं सोने जा रही हूं, इसका मतलब है कि मैं बीमार हूं और बीमारी की वजह से मैं लेटने जा रही हूं।
ठीक है।
और तो फिर इस तरह की बात शुरू हो जाती है। तो बिस्तर शब्द को कई अलग अलग अर्थों में लिया जा सकता है। ये लक्षणालंकार हैं। बिस्तर का इस्तेमाल बीमारी वगैरह को भड़काने के लिए किया जाता है। तो आइए अब हम विभिन्न प्रकार के लक्षणालंकारों पर नजर डालें और फिर हम इन्हें ईश्वर के भय पर अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। चीजों के बारे में सोचने के संज्ञानात्मक भाषाई तरीके। सबसे पहले किसी चीज का एक हिस्सा होता है। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। इसे आमतौर पर सिनेक्डोक कहा जाता है, लेकिन असल में यह किसी श्रेणी के मेटोनिमी के हिस्से के रूप में सिनेक्डोक ही होता है। सिनेक्डोक मेटोनिमी से ज्यादा विशिष्ट होता है।
अरे, आपके पास तो बहुत बढ़िया पहिए हैं।
अब जब आप किसी व्यक्ति से कहते हैं, एक आदमी अपनी बहुत ही शानदार कार या कोई बहुत ही शानदार कार लेकर आता है, और आप कहते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छे पहिए हैं, तो क्या आप वाकई उसके हबकैप और टायर वगैरह की बात कर रहे हैं?
नहीं।
पहियों का एक अच्छा सेट, आप फिर से पहियों का इस्तेमाल कारों को ट्रिगर करने वाले वाहन के रूप में कर रहे हैं। आप पहियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कारों को ट्रिगर करने वाले वाहन लक्ष्य। और इसलिए आप कहते हैं, अरे ये तो पहियों का एक अच्छा सेट है।
ठीक है।
तो यह एक पूरे का एक हिस्सा होगा।
दुष्टों का मुंह।
यह एक सिनेक्डकी है।
सिनेक्डकी।
ठीक है। तो यह पूरे के लिए एक अंश होगा।
यह एक प्रकार का मेटोनिमी है।
किसी सदस्य के लिए श्रेणी, जहां किसी श्रेणी का उल्लेख किया जाता है, सदस्य तक पहुंचने के साधन के रूप में ट्रिगर होती है। तो आप कहते हैं, गोली, पुराने जमाने में गोली, आप आमतौर पर गर्भनिरोधक गोली का जिक्र करते थे। तो आप कहते हैं कि गोली ट्रिगर होती है, यही आपके लिए गर्भनिरोधक गोली तक पहुंचने का साधन है। यह एक श्रेणी है जिसका इस्तेमाल किसी विशिष्ट सदस्य को संदर्भित करने के लिए किया जाता है।
ठीक है।
आपको उस तरह की चीज का उल्टा मिला। इस श्रेणी के एक सदस्य, आप कहते हैं जेरॉक्स मशीन। तो आप जेरॉक्स कहते हैं, जेरॉक्स मशीन पर जाइए और उसकी कॉपी बना लीजिए। क्या अब किसी को पता है कि वो क्या है?
हमें कॉपी की जरूरत नहीं है,
अब सब कुछ वेब पर है। लेकिन खैर, आप कहते थे जेरॉक्स मशीन पर जाकर कॉपी बना। अब यह फिर से एक सदस्य विशिष्ट मामला था, जेरॉक्स कंपनी जो जेरॉक्स मशीनें बनाती थी, वे कॉपी मशीनें बनाती थीं, लेकिन वहां था। वे इतने बड़े और इतने सार्वभौमिक हो गए कि हर कोई इसे जेरॉक्सिंग कहने लगा, और इसका मतलब था किसी चीज की कॉपी बनाना। और इसलिए जेरॉक्स एक ऐसा सदस्य है जो अब उन मशीनों की पूरी श्रेणी को दर्शाता है जो प्रतिलिपियां बनाती हैं। और अब कई कई अलग अलग मशीनें हैं जो प्रतिलिपियां बनाती हैं, लेकिन हम इसे जेरॉक्स कहते हैं,
ज़ेरॉक्स कुछ और ज़ेरॉक्स मशीन पर, और यह वास्तव में पूरी श्रेणी को दर्शाता है। तो सदस्य के लिए श्रेणी, श्रेणी ही वाहन है। सदस्य लक्ष्य है, श्रेणी की नकल के लिए सदस्य ज़ेरॉक्स, और इसलिए वह श्रेणी के लिए एक सदस्य है। आपके पास विशिष्ट के लिए सामान्य, विशिष्ट के लिए सामान्य है। बड़े लड़के रोते नहीं। तो आप कहते हैं कि बड़े लड़के रोते नहीं। यह एक खास स्थिति के लिए सामान्य बात है, जैसे कि बच्चे, शायद बच्चा रोने वाला हो या कुछ और। ओह, हम अब उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते या कुछ और, लेकिन शायद वो रोने वाला बच्चा है। और इसलिए आप कहते हैं कि बड़े लड़के रोते नहीं। और फिर हम में से कुछ लोग जिंदगी भर यही सीखते हैं कि इसका क्या मतलब है और क्या नहीं। तो एक विशिष्ट के लिए एक सामान्य, एक विशिष्ट के लिए एक सामान्य संज्ञानात्मक भी है, और मैं बस इनका अनुसरण करना चाहता हूं। यहां दो प्रकार के नोट्स दिए गए हैं। इस मेटोनीमी रहस्यवादी सोच की अन्य प्रकार की श्रेणियां एक सामान्य के लिए विशिष्ट हैं। तो आपके पास सामान्य है, बड़े लड़के किसी खास स्थिति के लिए रोते नहीं हैं। और अब आपके पास दूसरी तरफ जाने वाले सामान्य के लिए विशिष्ट है। मैंने कुछ ज़ेरॉक्सिंग की है, तो यह एक सामान्य चीज के लिए विशिष्ट है। किसी कार्य के लिए एजेंट, किसी किताब को लिखने के लिए। अब किसी किताब को लिखने के लिए, किसी किताब को लिखने के लिए वह एक एजेंट है, लेखक। आप किसी किताब को लिखने के लिए लेखक की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं वह किताब लिखने के विचार की ओर इशारा कर रहा है। और इसलिए आप लेखक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और आप ट्रिगर करते हैं। शब्द लक्ष्य तक पहुंचने का एक माध्यम है, लक्ष्य है किताब लिखना। फिर एजेंट एक क्रिया उत्पन्न करता है, इसलिए आप एजेंट का इस्तेमाल क्रिया, लक्ष्य क्रिया को ट्रिगर करने के लिए करते हैं। क्रिया का परिणाम एक बगीचे का भूदृश्य बनाना, एक बगीचे का भूदृश्य बनाना है। लैंडस्केपिंग एक क्रिया का परिणाम है, इसलिए आप किसी क्रिया को शुरू करने के लिए एक परिणाम करते हैं। यह क्रिया वास्तव में बागवानी, पौधे लगाना, छंटाई और कटाई थी। मूल रूप से आप कहते हैं एक बगीचे का लैंडस्केपिंग करने का अर्थ है बगीचे का निर्माण करना और उसे लैंडस्केप करने के लिए सामान तैयार करना। तो यह एक परिणाम है, लैंडस्केपिंग एक क्रिया का, पौधे लगाने का, और वहां आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका। तो ये एक और तरह का मेटोनीमी है। एक एजेंट के लिए एक उपकरण, एक औजार, कलम ने लिखा। खैर, अब कलम नहीं लिखती, मुझे लगता है कि अब उनके पास ऑटो पेन हैं, जिनका इस्तेमाल राष्ट्रपति बाइडेन कर रहे थे, या उन्हें पता था या नहीं। खैर, आपके पास एक पेन है और फिर वह लिखता है। ठीक है, पेन असल में लेखक का संदर्भ देता है। ठीक है, पेन ने लिखा, पेन ने एक लेख लिखा या कुछ और, पेन ने एक लेख लिखा। और इसलिए आप उस एजेंट को संदर्भित करने के लिए एक उपकरण का उपयोग कर सकते हैं जो यह काम कर रहा है। तो ये सभी तरह के मेटोनीमीज हैं। और एक और तरह की चीज होगी उत्पाद के लिए निर्माता। वो हार्ले बहुत बढ़िया लगता है, वो हार्ले बहुत बढ़िया लगता है। अब जब मैं हार्ले कहता हूं तो आप सभी जानते हैं कि इसका मतलब हार्ले डेविडसन है, वे ये अद्भुत मोटरसाइकिलें बनाते हैं। तो जब आप कहते हैं कि हार्ले बहुत अच्छा लगता है, तो आप मूल रूप से संदर्भ दे रहे होते हैं। आप हार्ले निर्माता, निर्माता हार्ले शब्द का इस्तेमाल उस उत्पाद यानी मोटरसाइकिल का जिक्र करने के लिए करते हैं। तो आप मोटरसाइकिल के संदर्भ में हार्ले का इस्तेमाल करते हैं। तो यह उत्पाद के लिए एक निर्माता है, एक समूह के लिए एक जगह है। हम सब कहते हैं कि वाशिंगटन ने फैसला किया। अब क्या वाशिंगटन शहर कुछ भी तय करता है? बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वाशिंगटन ने फैसला किया। हम वाशिंगटन शहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम वाशिंगटन में कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो फैसले लेती है, कानून बनाती है और नियामक ढांचे जो सब वाशिंगटन में हैं, और इसलिए वे वाशिंगटन ने तय किए हैं। और इसलिए इस तरह की चीजों में आप शहर की बात नहीं कर रहे हैं, आप वाशिंगटन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो निशाना बनाने का जरिया है। निशाना है कांग्रेस जो कानून बनाती है, या नियामक राज्य जो नियम बनाता है। आपके पास एक उपघटना के लिए एक पूरी घटना है। एक पूरी घटना का इस्तेमाल एक उपघटना के संदर्भ में किया जाता है। तो मान लीजिए बिल बोस्टन जा रहा है, बिल बोस्टन जा रहा है। अब इसका क्या मतलब है? बिल बोस्टन जा रहा है। अब ड्राइविंग में कई उपश्रेणियां शामिल हो सकती हैं, ठीक है। उपघटनाओं के लिए पूरी घटना, वह कार में ईंधन भर रहा है, गाड़ी चला रहा है, रास्ते की योजना बना रहा है, गूगल वगैरह पर नक्शा बना रहा है और फिर अपनी यात्रा शुरू कर देता है, ठीक है। तो वह इन सभी घटनाओं को संदर्भित करने के लिए गाड़ी चला रहा है जिनसे यह बना है। तो आपके पास एक पूरी घटना है जो एक उपघटना को ट्रिगर करती है, उपघटनाओं की एक श्रृंखला, और फिर अंत में यहाँ आपको प्रभाव या कारण मिला है। जॉन का चेहरा लंबा है, जॉन का चेहरा लंबा है। आप कहते हैं ओह तुम्हारा चेहरा तो बहुत लंबा है। अब लंबे चेहरे का इस्तेमाल उदासी जगाने के लिए एक रूपक के तौर पर किया जाता है, ठीक है। इसका असर लंबे चेहरे पर ही पड़ता है, कारण तो उदासी है, ठीक है। तो लक्ष्य उदासी है, साधन उदास चेहरा है। यह इन ढेरों मेटोनिमीज और उनके काम करने के तरीके का एक उदाहरण है। ये हमारी भाषा में हर जगह मौजूद हैं और खास तौर पर नीतिवचन की किताब में। दरअसल एक बार जब आप इसमें भी शामिल हो जाएं, अगर आप इसे और गहराई से जानना चाहें तो मैं बस यही एक बात याद रखूंगा, लेकिन परमेश्वर का नाम इसमें नाम लिखा है, इसमें नाम लिखा है, इसमें नाम लिखा है। और हाशेम नाम के साथ यह ईश्वर का संदर्भ देता है, और इसलिए यह नाम भी एक लक्षणालंकार है जो नाम का संदर्भ नहीं देता। आप यावे या एलोहिम या जो भी नाम आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसे इसी तरह लिखते हैं, गॉड गॉड। लेकिन यह नाम का संदर्भ नहीं है, मैं इसे कैसे कहूं? यह ईश्वर के संदर्भ में नाम शब्द का प्रयोग है, और इसलिए यह एक रूपक और रूपक है। अब सबसे स्पष्ट उदाहरण, आइए इस तरह के रूपक पर आते हैं, और हम रूपक और रूपक के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, विभिन्न श्रेणियों में रूपक, विभिन्न श्रेणियों में रूपक, सभी प्रकार से रूपक, बहुत ही बहुआयामी। आइए बाइबल में ईश्वर के भय के लिए एक स्पष्ट उदाहरण लें। उत्पत्ति अध्याय 31 श्लोक 42 में मूलतः इसहाक के भय का उल्लेख है। इसहाक का भय ईश्वर का एक रूपक है, इसहाक का भय ईश्वर का प्रतिरूप है, ठीक है। तो यह एक पर्यायवाची है, ईश्वर के प्रति इसहाक का भय। अगर मेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भय, तो इसे फिर से लीजिए, मेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भय। दरअसल भय, आप देखेंगे कि कई अनुवादों में भय को बड़े अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि वे सभी जानते हैं कि वह भय असल में परमेश्वर का संदर्भ देता है, ठीक है। तो यह अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है, लेकिन यहाँ लिखा है अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भय। और फिर इसहाक का डर उसे यह विचार दिलाता है कि यही परमेश्वर है, ठीक है। अगर वह मेरी तरफ होता तो अब तक तू मुझे खाली हाथ ही भेज देता, याकूब लाबान से कहता है। उत्पत्ति 31 में। तो यह एक स्पष्ट उदाहरण है जहां परमेश्वर का भय या इसहाक का भय वास्तव में उत्पन्न होता है, तो उस संदर्भ में भय एक रूपकात्मक अर्थ में परमेश्वर को भी उत्पन्न करता है। तो ठीक है, अब मैं एक ऐसे विचार का परिचय देना चाहता हूं जिसे हम पवित्र भय कहेंगे, और यह मुख्यतः रुडोल्फ ओटो नामक एक व्यक्ति के विचार पर आधारित होगा जिन्होंने वर्षों पहले द होली नामक एक पुस्तक लिखी थी, और इसलिए यह उनके रहस्यवाद के विचार पर आधारित होगा। जबरदस्त! अब ये रहस्य क्या है? क्या यह भयानक है? मैं इसे पवित्र भय कहूंगा। पवित्र भय दिव्य है, या शायद बेहतर कहें तो दिव्य पाठ है। मूसा ईश्वर का दर्शन चाहता है, और यहां आपको आतंक का एक विचार मिलता है। अब यही डर आतंक है। ठीक है, ये श्रद्धा नहीं है। ऐसा नहीं है, आप जानते हैं, हम इस समय इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। डर तो बिल्कुल आतंक है, कांपता है और भयानक है। इस तरह की चीजें, डर 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 डर। लेकिन यह ईश्वर की पवित्रता, महानता या शुद्धता के प्रति अद्भुत, भव्य, विस्मयकारी, अद्भुत प्रतिक्रिया से भी जुड़ा है। दूसरे शब्दों में, जब आप कोई ऐसी चीज देखते हैं जो इतनी शानदार होती है और आपको विनम्र बना देती है, तो आपके मन में डर और चीजों का यह भाव भी आ जाता है। मैं समझता हूं आपको यह पहाड़ों और समुद्रों के आसपास मिल सकता है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि समुद्र के पास जाना और बस उसके अनंत विस्तार को देखना वाकई बहुत अच्छा है। या फिर पहाड़, और आप रॉकीज में इन विशाल पहाड़ों को देखते हैं, यह अद्भुत है। मुझे यह रेगिस्तान और इस रहस्य से मिलता है जबरदस्त। जब आप जाते हैं तो मैं एक टेप देखने गया। लेस्ली एलन नाम का एक व्यक्ति कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में फुलर सेमिनरी में एजेकील की किताब पर काम कर रहा था, और मुझे पहाड़ों को पार करके जाना था। जाहिर है, डेनवर गया और फिर पहाड़ों के ऊपर से फिर नेवादा और फिर लॉस एंजल्स। मुझे डेथ वैली नामक इस रेगिस्तान को पार करके जाना था। रेगिस्तानों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। 1970 के दशक में जब मैं इसराइल में रहता था, तो मैं और मेरे दो दोस्त रेगिस्तान में पैदल चल रहे थे और निर्जलीकरण से लगभग मर ही गए थे। यह बहुत भयानक था। उसके बाद जब मैं रेगिस्तान में पहुंचता हूं और इस डेथ वैली को देखता हूं, जहां मेरा बेटा असल में एक मरीन था और उसे इनमें से किसी एक मोजावे वाइपर में प्रशिक्षण लेना पड़ा था। मैं रेगिस्तान में जाता हूं और बाहर देखता हूं, और जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, और अगर आपकी कार को कुछ हो जाए तो आप यहां से बाहर नहीं निकल सकते। यह बहुत दूर है और मुझे पता है कि वहां लगभग न पहुंच पाना कैसा होता है, और यह बहुत डरावना होता है। आप रेगिस्तान को देखिए। रेगिस्तान बेहद खूबसूरत है, और इसीलिए इसमें एक आकर्षण है कि आप बाहर जाकर रेगिस्तान को देखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आपके मन में एक गहरा सम्मान, लगभग भय और यह एहसास कि यह चीज इतनी बड़ी है कि मैं यहां बाल्टी में गिर जाऊंगा और रेगिस्तान में मर जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, का डर भी है। तो खैर, आप डेथ वैली को पार करते हैं, सुबह सुबह जब ठंड होती है तब करते हैं, और आप इसका ज्यादातर हिस्सा पार कर सकते हैं। उस पागल चीज को पार करने में 2 घंटे लग गए। तो खैर, इस राजसी महानता और विस्मय का विचार इस तरह के उदासी और भय से जुड़ा हुआ है, और कई बार भगवान के साथ उनकी पवित्रता के कारण, और यह रुडोल्फ ऑल्टमैन का पवित्रता का विचार है। रुडोल्फ ओटो की पुस्तक और भगवान की पवित्रता और भगवान की महानता। जब किसी को भगवान की महानता का एहसास होता है और हम में से कितने लोग अब इन हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ बाहर जा रहे हैं और ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं, और आप ब्रह्मांड की विशालता का एहसास करते हैं और आप महसूस करते हैं कि हम पृथ्वी नामक इस छोटे से कण पर हैं और मैं अब मैसाचुसेट्स नामक इस छोटे से कण पर हूँ और मैं एक घर और सामान में हूँ, और आप महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड मेरे बारे में नहीं है, यह बहुत बड़ा है, और आप महसूस करते हैं कि इस विशाल विस्तार की तुलना में आप कितने छोटे हैं। शुरुआत में भगवान ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने कहा, और यह अस्तित्व में आया, और यह अविश्वसनीय है, और आप महसूस करते हैं कि ईश्वर कितना राजसी और कितना अद्भुत है, और आप महसूस करते हैं कि वाह, और यह वाह कारक है जो इसे पकड़ता है, और यह मिस्टीरियम है जबरदस्त विचार। अब आइए इस पर कुछ आयतें देखें। तो निर्गमन अध्याय 3:6 में मूसा ने कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। मूसा ने डर के मारे अपना चेहरा छिपा लिया, और यही हमारा डर शब्द है, ठीक है, ये है यारे, ये हमारा शब्द है यारे, जो डर के लिए हिब्रू शब्द है, और इसलिए उसने अपना चेहरा छिपा लिया क्योंकि वह जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर को देखने से डर रहा था, और परमेश्वर मूसा को बुलाने आ रहे थे, और मूसा क्या उसने अपना चेहरा छिपा लिया। परमेश्वर कहते हैं, मूसा अपने जूते उतारो, तुम पवित्र भूमि पर खड़े हो। डर और पवित्रता के बीच के संबंध पर ध्यान दीजिए, आपको एक ही प्रकार की बात मिलती है। यशाया 6 में यशाया, पवित्र 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 मैं नष्ट हूँ, यह नष्ट होने का, विनम्रता का, परमेश्वर की उपस्थिति से बनने का भाव है। मुझे लगता है कि उत्पत्ति 2:3 में भी आपको यही बात मिलती है, जहाँ आदम और हव्वा के पाप करने के बाद परमेश्वर उनके पास आते हैं, और वे क्या करते हैं, वे परमेश्वर की उपस्थिति से छिप जाते हैं, और इसलिए भय और छिपने वगैरह का यह विचार है। प्रेरितों के काम अध्याय 37:32, प्रेरितों के काम 7:32, मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। और मूसा कांप उठा, ठीक है, और मूसा कांप उठा और देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और इसलिए यहाँ यह भय और कांपने के विचार को जोड़ता है। ठीक है, मुझे लगता है कि यह सोरेन कीरकेगार्ड की एक किताब है, भय और कांपना, और वैसे पढ़ने लायक भी है। निर्गमन अध्याय 20:18-21, और अब जब सभी लोगों ने गड़गड़ाहट और बिजली की चमक और तुरही की आवाज और पहाड़ों से धुआं निकलते देखा, तो लोग डर गए। फिर से यह हमारा यारे शब्द है, हमारा भय शब्द। वे डरे हुए थे, भयभीत थे और कांप रहे थे। तो यह सिर्फ श्रद्धा वगैरह नहीं है, नहीं, यह डर और कांपना है, और कांपते हुए वे दूर खड़े हो गए। ध्यान दें कि वे उस चीज और खुद के बीच दूरी चाहते हैं जिससे डर पैदा हो रहा है। ठीक है, तो जब मेरी बेटी उस काले कुत्ते के पास से गुजरती है तो वह कुछ दूरी चाहती है, एक बाड़ जिससे उसे बांधा जा सके ताकि कुत्ता उसे और उसकी चीजों को न पकड़ ले। हालांकि इसका इस्तेमाल ईश्वर के साथ सकारात्मक रूप से किया जाता है। और मूसा से कहा, हे मूसा, तू हमसे बातें कर और हम सुनेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करने पाए, कहीं ऐसा न हो कि हम मर जाएं। फिर मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा करने आया है कि उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे और तुम पाप न करो। भय का क्या फल होता है? और इसका फल यह होता है कि तुम नहीं भेजते। रहस्यकथा में परमेश्वर के भय का कारण कार्य प्रकार सामने आता है। प्रेमेंडम विचार को निर्गमन अध्याय 14:10-30:31 में शामिल किया गया है। मुझे खेद है, निर्गमन 14:10-31। यहीं से वे रीड सागर या लाल सागर पार कर रहे हैं, और इस प्रकार यह ईश्वर के भय से शुरू होता है और ईश्वर के भय पर ही समाप्त होता है। तो इसमें एक तरह का समावेश है। पुस्तक के अंत में शुरुआत और अंत में ईश्वर के भय को प्रमुखता दी गई है, यह रहस्य।
बहुत बढ़िया विचार।
ठीक है, निर्गमन अध्याय 14 पद 10 में जब फिरौन निकट आया तो इसराइलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा कर रहे हैं और वे डर गए और बहुत डर गए और इसराइलियों ने यहोवा की दोहाई दी।
इसराइलियों ने यहोवा की उस महान शक्ति को देखा जो उसने मिस्रियों के विरुद्ध प्रयोग की थी
और मूसा से कहा, हे मूसा तू हमसे बातें कर और हम सुनेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करने पाए, कहीं ऐसा न हो कि हम मर जाएं। फिर मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा करने आया है कि उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे और तुम पाप न करो।
भय का क्या फल होता है?
और इसका फल यह होता है कि तुम नहीं भेजते।
तो लोग प्रभु का भय मानते थे और प्रभु पर विश्वास करते थे।
यहां भी संबंध पर गौर कीजिए, वे प्रभु का भय मानते थे और उस पर विश्वास करते थे।
तो यहां भय और विश्वास और उसके सेवक मूसा के बीच का संबंध है।
यह एक क्लासिक है, इसकी शुरुआत और अंत भय के इसी विचार से होता है।
और भय तब होता है जब वे ईश्वर के इन महान कार्यों को देखते हैं और उनके सामने समुद्र खुल जाता है और वे उस पार जाते हैं और फिर मिस्र के फिरौन के सामने आते ही उस पर टूट पड़ते हैं।
और फिर अचानक वह क्या है?
वे ईश्वर से डरते हैं और उस पर विश्वास करते हैं।
वे उसके महान कार्यों को, इतिहास में उसके महान कार्यों को देखते हैं
और वे महान कार्य भय पैदा करते हैं और फिर भय उनके विश्वास को जन्म देता है, या कारण और प्रभाव भय और प्रभाव विश्वास पर आधारित होता है।
ठीक है, इस अंश में एक विशिष्ट बात ईश्वर के भय के साथ कारण और प्रभाव प्रकार का संबंध है।
यह व्यवस्था विवरण अध्याय 5 श्लोक 24 से 29 है।
तो फिर हम क्यों मरें?
क्योंकि यह बड़ी आग हमें भस्म कर देगी।
परमेश्वर और उनके ईश्वर दर्शन की बात करें तो ईश्वर दर्शन का अर्थ है परमेश्वर का प्रकट होना।
थियो ईश्वर, फनी प्रकटन, ईश्वर का प्रकटन, एक ईश्वर दर्शन, एक ईश्वर दर्शन।
यदि हम अपने ईश्वर की वाणी अब और न सुने तो मर जाएंगे।
क्योंकि समस्त प्राणियों में ऐसा कौन है जिसने हमारी नाई आग के बीच में से बोलते हुए जीवित ईश्वर की वाणी सुनी हो और जीवित रह सका हो।
निकट जाकर वह सब सुनो जो हमारा परमेश्वर यहोवा कहे, और वह सब जो हमारा परमेश्वर यहोवा तुमसे कहे हमसे कहो, और हम उसे सुनेंगे और उसके अनुसार करेंगे।
यहां आज्ञाकारिता से जुड़े संबंध पर ध्यान दीजिए।
और जब तुम मुझसे बात कर रहे थे तब प्रभु ने तुम्हारे शब्द सुने,
और प्रभु ने मुझसे कहा, अब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है।
यह बहुत बढ़िया है।
मैंने इन लोगों की बातें सुनी हैं जो उन्होंने तुमसे कही हैं।
वे बिल्कुल सही नहीं हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है वह सब सही है।
आप पंचग्रंथ में परमेश्वर को यह कहते हुए ज्यादा नहीं सुनते, अरे उन्होंने जो कहा वह सही था। आमतौर पर वे परमेश्वर के विरुद्ध या, आप जानते हैं, मूसा के विरुद्ध या किसी और के विरुद्ध विद्रोह करते हैं।
यहां वह कहता है, यहां परमेश्वर कहता है, उनका अपने प्रति भय सुनने के बाद एक अंतर रहस्यमय बहुत ही जबरदस्त बात है। जब वे परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं तो वे जो कुछ कहते हैं वह सब सही होता है।
काश उनका हृदय ऐसा होता कि वे सदैव मेरा भय मानते और मेरी सभी आज्ञाओं का पालन करते, ताकि उनका और उनके वंशजों का सदैव भला हो।
यहां भी भय की धारणा आज्ञाकारिता और इस रहस्य को जन्म देती है।
बहुत बढ़िया विचार है।
तो ये व्यवस्था विवरण अध्याय 5 श्लोक 24 से 29 हैं।
ठीक है।
इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए भजन संहिता 89.6 के कुछ और अंश हैं। और आइए देखें। भजन संहिता 89:6 में इसका उल्लेख है, और मैं अब यशायाह अध्याय 41 पद 23 पर जा रहा हूँ। हमें यशायाह 41 बताइए ताकि आपको वहाँ यशायाह का संदर्भ समझ में आ जाए। हमें बताइए कि आगे क्या होने वाला है ताकि हम जान सकें कि आप परमेश्वर के हैं। चाहे भलाई करो या बुराई, हम घबरा जाएं और डर जाएं। निराश और भयभीत, इस तरह की भयावह प्रतिक्रिया। ठीक है, हमें बताओ कि भविष्य में क्या होगा ताकि हम जान सकें कि तुम ईश्वर के हो, कि तुम ईश्वर के हो। NIV कहता है, कुछ अच्छा या बुरा करो जिससे हम निराश और भयभीत हो जाएं। ध्यान दीजिए, ESV कहता है, निराश और आतंकित। NIV कहता है, निराश और भय से भरा हुआ। और वास्तव में यहाँ भय शब्द का प्रयोग किया गया है। यशायाह 8:12-13 कहता है, तुम कौन होते हो जो इन लोगों द्वारा कही जा रही हर बात को षड्यंत्र कहते हो, और तुम्हें उनसे डरना नहीं है जिनसे वे डरते हैं। दूसरे शब्दों में वह विभिन्न प्रकार के भय के बीच अंतर करते हुए कह रहे हैं, इन दूसरे देवताओं से जो वे डरते हैं उससे मत डरो, क्योंकि वे दूसरे देवता वास्तव में कोई देवता नहीं हैं। वह कहता है, मुझसे डरो, क्योंकि जिससे वे डरते हैं या जिससे डरते हैं वह सेनाओं का यहोवा है, जिसे तुम्हें पवित्र समझना चाहिए। पवित्रता और भय के बीच के संबंध पर ध्यान दो, वही तुम्हारा भय होगा, वह तुम्हारा डर होगा, वह तुम्हारा खौफ होगा। ठीक है, यहां सिर्फ श्रद्धा की बात नहीं हो रही है, यहां भय और डर की बात हो रही है। वह तुम्हारा भय होगा, तब वह पवित्र स्थान ठहरेगा। ठीक है, परंतु इसराइल के दोनों घराने यरूशलेम के निवासियों के लिए ठेस पहुंचाने का पत्थर, ठोकर खाने की चट्टान और फंदा और जाल ठहरेंगे, और इसलिए ये हमारे सामने हैं। यशायाह इस डर या भय को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है जब परमेश्वर उसे चेतावनी देता है, जिससे वे डरते और भयभीत होते हैं, उससे मत डरो। ठीक है, मूलतः ईरान या सीरिया से सामरिया और यहूदा पर होने वाले हमले की बात करें तो सर्वशक्तिमान प्रभु ही वह है जिसे तुम्हें पवित्र मानना है, उसी का भय मानना है, वही है जिससे तुम्हें डरना चाहिए। ठीक है, भविष्यवक्ताओं के नीचे कूदना, इस रहस्य का वही विचार, यह विचार यशायाह या यिर्मयाह के अध्याय 10:7 में आता है। कौन तुमसे नहीं डरेगा, हे राष्ट्रों के राजा। अब जरा गौर करो, वह कितनी धृष्टता की बात कर रहा है, वह एक आलंकारिक प्रश्न पूछ रहा है। एक आलंकारिक प्रश्न का उत्तर जरूरी नहीं होता, आलंकारिक प्रश्न एक अलंकार है। ठीक है, आप एक प्रश्न पूछते हैं। पुराने जमाने में जब मैं पढ़ाता था तो मैं एक आलंकारिक प्रश्न पूछता था, और कुछ लोग इस आलंकारिक प्रश्न को समझ नहीं पाते थे, और वे हाथ उठाकर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते थे। यह एक आलंकारिक प्रश्न है। आलंकारिक प्रश्न प्रश्न के वेश में एक कथन होता है, और अगर आप इसे समझ नहीं पाए तो समझ लीजिए कि यह एक कथन है। आप सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। यह एक सवाल के रूप में एक बयान है, और यह किसी बात की ओर इशारा करने की कोशिश है, या कई बातें हैं। कभी कभी आलंकारिक प्रश्नों का इस्तेमाल फटकार लगाने के लिए किया जाता है, कभी कभी वे किसी बात को उजागर करने के लिए होते हैं। आलंकारिक प्रश्नों के कई अर्थ होते हैं। यह न तो सही समय है और न ही सही जगह, लेकिन इस पर ध्यान दीजिए, हे राष्ट्रों के राजा, कौन तुझसे न डरेगा, ध्यान दीजिए कि यह भय और राजा को जोड़ रहा है और यह कह रहा है कि परमेश्वर सभी राष्ट्रों का राजा है और उससे किसे डरना चाहिए। और हम भय और राजा के बीच के इस संबंध पर बार बार ध्यान देंगे और दैवीय राजा भी और मानव राजा भी इस मामले में। और यह दुस्साहस की कौन नहीं डरेगा, कौन राजाओं के राजा से नहीं डरेगा। ठीक है, सचमुच सभी राष्ट्रों के सभी राज्यों के सभी बुद्धिमान लोगों में से तुम्हारा ही हक है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। ईश्वर कितना अनोखा है, इसे अतुलनीयता कहते हैं। हाँ, वह अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपने जो कुछ भी देखा है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। वह पूरी तरह से अद्वितीय है, या समग्र रूप से, जैसा कि कुछ लोग कहते थे, बिल्कुल अलग। वह एक अद्वितीय व्यक्ति है, कोई और सत्ता नहीं है। पूरा ब्रह्मांड है जो सृष्टि है, और फिर रचिता की एक पूरी अलग श्रेणी है, और रचिता सृष्टि से अलग हो जाता है, और इस तरह आप उस अंतर को समझ सकते हैं। और वह कहता है, जानते हो, कौन तुमसे नहीं डरेगा, ब्रह्मांड के महान रचयिता। उसने ये सभी अद्भुत कार्य किए हैं और अपने लोगों को छुड़ाया है, खासकर सृष्टि और निर्गमन में। पुराने नियम में ये दो बड़ी बातें हैं, सृष्टि का वृत्तांत जहां उसने संसारों की रचना की वगैरह, और मुक्ति, मिस्र से मुक्ति, मिस्र से बाहर आना, निर्गमन। और बस यही इस रहस्य का आधार है। जबरदस्त। फिर इस भय और भय के साथ साथ परमेश्वर की महिमा और विस्मय के साथ, भजन संहिता अध्याय 47 पद 2 और 3, परमप्रधान प्रभु के लिए ध्यान दें कि परमप्रधान प्रभु भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी पर एक महान राजा है। इसलिए परमेश्वर को उसके राजा के रूप में प्रयोग किया गया है, और यह राजा तो इसी डर की वजह से है। राजा से डर लगता है, ठीक है। उसने अपने लोगों को हमारे अधीन और राष्ट्रों को हमारे पैरों तले कर दिया, और उसके उद्धार के महान कार्य ही वह कारण हैं जिनके लिए उसका भय होना चाहिए। अब मैं नए नियम में भय को शामिल करूंगा। उसने कहा, अच्छा, ये सब तो है पुराने नियम की बातें, नए नियम के बारे में क्या? ये देखो, रूपांतरण पर्वत पर पतरस, याकूब और यूहन्ना यीशु के साथ जाते हैं, और वे रूपांतरण पर्वत पर जाते हैं जहां यीशु का रूपांतरण होने वाला है, और वे मूसा और एलियाह से मिलने जा रहे हैं, और यीशु उनसे बातचीत करने वाले हैं, और शिष्य पतरस, याकूब और यूहन्ना वहां ऊपर हैं। वह अभी बोल ही रहा था कि अचानक एक उजले बादल ने उन्हें ढक लिया, और बादल से एक आवाज आई, यह मेरा प्यारा बेटा है, मानो ईश्वर यहां से गुजर रहा हो, और यह मानो कह रहा हो, आमीन। और परमेश्वर बादलों को चीर कर कहता है, वाह, यह मेरा बेटा है, ठीक है, यह मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं। उसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो। जब चेलों ने यह सुना तो वे मुंह के बल गिर पड़े और डर गए। फिर से यह डर स्वर्ग से यीशु पर उतरती हुई ईश्वरीय आवाज के जवाब में है। लेकिन यीशु आए और उन्हें छूकर कहा, उठो और डरो मत, और उन्होंने अपनी आंखें उठाई और वहां केवल यीशु को देखा। तो नए नियम में एक सुंदर अंश है जहां शिष्यों को परमेश्वर की वाणी के साथ यह ईश्वरीय दर्शन घटित होता हुआ मिलता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और उनकी प्रतिक्रिया यह है कि वे भयभीत हैं, और इसलिए यह सिर्फ पुराने नियम में ही नहीं बल्कि नए नियम में भी आता है। खैर, मुझे डर है कि अब कभी कभी हमें ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। हम में से ज्यादातर लोग खड़े हो जाएंगे।
अच्छा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ?
जानते हो, और यह वैसे भी नहीं है, यह पवित्र भय है। आगे बढ़ते हैं। इस विचार में ईश्वर कितना अद्भुत है,
कितना अद्भुत।
भगवान से कहो कितना भयानक है, और असल में यह शब्द भयानक है। यह डर के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है।
कितना भयानक,
भयानक शायद एक अच्छा अनुवाद होगा। और तुम्हारे कर्म, तुम्हारे कर्म। और इसलिए परमेश्वर के कार्य, इसराइल को मिस्र से छुड़ाना वगैरह, आपकी शक्ति में इतने महान हैं कि आपके शत्रु आपके सामने झुक जाते हैं। और इसलिए आपके मन में यह झुकने का भाव और यह भयावह प्रतिक्रिया आती है।
सिहरन,
और सारी धरती तुम्हारी पूजा करती है। ईश्वर का भय मानने और ईश्वर की पूजा करने के बीच के संबंध पर गौर कीजिए। हम इसे विकसित होते देखेंगे।
ठीक है।
और सिर्फ पूजा ही नहीं, बल्कि प्रशंसा भी। तो परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर की स्तुति होती है।
सारी पृथ्वी,
यह भजन संहिता अध्याय 66 पद 3 से 7 है। भजन संहिता 63:66, क्षमा करें, पद 3 से 7। सारी पृथ्वी तेरी आराधना करती है, तेरा भजन गाती है और तेरे नाम का गुणगान करती है।
सेला,
आओ और देखो कि यहोवा परमेश्वर ने क्या किया है। वह मनुष्यों के प्रति अपने कामों में विस्मयकारी है। उसने समुद्र को सूखी जमीन में बदल दिया। वे पैदल ही नदी पार करके यर्दन नदी पार कर गए। वहां हम उसके कारण आनंदित हुए, जो अपनी शक्ति से सदा राज्य करता है, जिसकी आंखें राष्ट्र पर लगी रहती हैं।
विद्रोही लोग अहंकार न करें।
भय, सिकुड़ने और खुद को बड़ा समझने के बीच के इस संबंध पर गौर कीजिए। तो ईश्वर का भय नम्रता से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, और हम इसे बार बार, खासकर नीतिवचन की पुस्तक में, यहां और अन्यत्र भी देखेंगे। रहस्य पर कुछ और पंक्तियां।
जबरदस्त विचार।
नीतिवचन अध्याय 24 श्लोक 21 और 22। इसे देखो, जहां राजा और यहोवा दोनों का भय मानना चाहिए। मेरे बेटे, नीतिवचन 24:21। मेरे बेटे, प्रभु का भय मानो, प्रभु का भय मानो। प्रभु और राजा, मानव राजा, दोनों का भय मानो। जो लोग ऐसा नहीं करते, उनके साथ मत जुड़ो, क्योंकि उन पर अचानक विपत्ति आ पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर विपत्ति लाने में सक्षम है। वैसे राजा भी आपके जीवन में विपत्ति ला सकता है, इसलिए उससे डरो। और कौन जानता है कि उन दोनों से क्या विनाश होगा? और इसलिए दूसरे शब्दों में, आपको यह समझना होगा कि आप ईश्वर के साथ, राजा के साथ व्यवहार कर रहे हैं। आप राजा के सामने टी शर्ट पहनकर यह नहीं कह सकते कि अरे यार, कैसे हो, आज क्या हो रहा है, और आप जानते हैं, आप राजा को इस तरह संबोधित नहीं करते। आपके मन में उनके प्रति आदर और श्रद्धा है। ये विचार अच्छे हैं, लेकिन साथ ही डर और यह जानना भी जरूरी है कि राजा हर तरह की चीजें कर सकता है, और आपको उसकी जरूरत है। आप जानते हैं, उसकी उपस्थिति में आप कुछ मायनों में असहाय हैं। आगे भजन 76:12।
राजकुमारों का मनोबल कौन तोड़ता है?
पृथ्वी के राजाओं को किससे डरना चाहिए? इसलिए हमें परमेश्वर और राजा का भय मानना चाहिए, लेकिन पृथ्वी के राजाओं को उससे डरना चाहिए जो राजाओं को स्थापित करता है और उन्हें गिराता है। पृथ्वी के राजाओं को किससे डरना चाहिए?
भजन संहिता अध्याय 12, क्षमा करें, भजन संहिता अध्याय 2 पद 11। भय के साथ प्रभु की सेवा करो।
परमेश्वर की सेवा और भय के बीच के संबंध पर ध्यान दीजिए। हम इसे बार बार उठते देखेंगे और कांपते हुए आनंदित होंगे। यह फिर से श्रद्धा या भय की बात नहीं है, यह भय और कांपना है। यह रहस्य है ट्रेमेंडम, यह भयानक जबरदस्त आतंक भय। और इसलिए यहाँ भजन संहिता के अध्याय 2 श्लोक 11 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, भय के साथ प्रभु की सेवा करो। समानांतर, आप जानते हैं, 2 पंक्तियां समानांतर हैं। कांपते हुए आनंदित हो। जो डर से मेल खाता है, ईश्वर का डर, उसके सामने कांपना। उन्हें चूम लो। यह बहुत अच्छा है। यह पद 11 और 12 है। भजन संहिता 2 इस प्रकार समाप्त होता है, पुत्र को चूमो, कहीं ऐसा न हो कि वह क्रोधित हो जाए और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि उसका क्रोध तुरंत भड़क उठता है। ठीक है, तो क्या आपने परमेश्वर के क्रोध के इस भय को देखा है, जो यह विचार जगाता है कि जो कोई उसकी शरण में आता है वह धन्य है। अब ध्यान दीजिए कि भजन 2 कैसे समाप्त होता है, धन्य हैं वे जो उसकी शरण लेते हैं। भजन 1 कैसे शुरू हुआ? धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर की सलाह पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, तिरस्कार करने वालों की मंडली में बैठता है। धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह व्यक्ति, धन्य है वह व्यक्ति। ठीक है, अध्याय 2 का अंत कैसे होता है? और धन्य है वे जो उसकी शरण लेते हैं। और इस प्रकार आपको भजन संहिता अध्याय 1 और भजन संहिता अध्याय 2 के बीच यह समावेश मिलता है, जो उन्हें एक साथ लाता है। इस समावेश को एक तरह से पुस्तक के अंत में रखता है, जो धन्य व्यक्ति से शुरू होकर धन्य व्यक्ति पर समाप्त होता है और उन दोनों भजनों को एक साथ जोड़ता है। यह एक तरह से अच्छी बात है। आप भजन 42 और 43 देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये 2 भजनों का एक साथ जुड़ना दिलचस्प है। खैर, अब ठीक है, हमने ईश्वर के भय का जिक्र किया, चलिए अब अगले भाग पर चलते हैं। ईश्वर का भय दंड का भय है, और यहां सजा का विचार आता है। ईश्वर का भय सजा का भय है। ठीक है, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। उन ऐसा करने से पहले मैं एक यूहन्ना पर बात करता हूं। हां, मैं यहां एक यूहन्ना पर बात करने जा रहा हूं। 1 यूहन्ना 4:18 परमेश्वर का भय। 1 यूहन्ना 4:18 पढ़िए। बहुत से लोग इस विचार का इस्तेमाल भय, थरथराहट, परमेश्वर के भय की धारणा को कमजोर करने के लिए करते हैं। वे दरअसल आतंक से डरते हैं, इसलिए वे 1 यूहन्ना 4:18 का हवाला देते हैं, जहां कहा गया है कि प्रेम में कोई भय नहीं होता, प्रेम में कोई भय नहीं होता। और इसलिए वे कहते हैं, देखो, और इसलिए हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, और इसलिए हम नहीं करते, अब कोई डर नहीं है। लेकिन मुझे बस 1 यूहन्ना 4:18 पढ़ने दीजिए। प्रेम में भय नहीं होता, बल्कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से है। तो भय और दंड के बीच का यह संबंध, और जो कोई भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। तो जब डर की बात होती है तो एक तरह का डर होता है। यह सजा की बात करता है और कहता है, जैसा कि मैंने कुछ संदर्भों में कहा था, जैसे मैंने आपको मेंढक के चप्पू के साथ बताया था, मुझे अपने पिता से डर लगता था। ठीक है, यह एक अच्छा डर था, मुझे यह सीखने की जरूरत थी, और इससे मुझे उसके लिए सम्मान मिला। और ठीक है, तो सजा का यह डर या आतंक डर का ही एक हिस्सा है। और एक यूहन्ना 4:18 कह रहा है कि सजा का डर तब होता है जब परमेश्वर का प्रेम उस पर हावी हो जाता है, क्योंकि मसीह ने हमारी सजा ले ली है, और यह अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको यह सुझाव देना चाह रहा हूं कि और भी कई तरह के डर हैं जिन्हें आप ईश्वर के डर से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं जब आप ईश्वर के डर की बात करते हैं तो सजा का डर ही बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। वरना आप कहेंगे, ठीक है, मैं ईश्वर से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप अपनी बुद्धिमत्ता को ही त्याग देंगे। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में मैं कह रहा हूं कि इसके अलग अलग अर्थ हैं। संदर्भ ही अर्थ निर्धारित करता है, इसलिए हमें इन सभी संदर्भों को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि भय अनेकार्थक होता है। ठीक है, डर के कई मतलब होते हैं, और अगर आप उस एक को लें, जानते हैं, पूर्ण भय, प्रेम को बाहर निकाल दें, भय को निकाल दें, और फिर उसे बाकी सभी भयों पर लागू करें, तो आपने इंसानियत खो दी है, क्योंकि ईश्वर का भय ही ज्ञान की शुरुआत है। ठीक है, तो डर के अलग अलग पहलू होते हैं। यहां वह एक यूहन्ना 4:18 में सजा के डर की बात कर रहे हैं, इसलिए सभी पर एक ही अर्थ थोपने में सावधानी बरतें, और आप वास्तव में 3/4 से ज्यादा अर्थों का अर्थ ही बिगाड़ देते हैं। लेकिन क्या सजा का डर बाइबल में है? इसका जवाब है हाँ। सजा का डर, 1 शमूएल 12:1-20, 1 शमूएल 12:1-20। अगर आप प्रभु का भय मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो इस संबंध पर ध्यान दीजिए, प्रभु का भय मानिए और उनकी सेवा कीजिए। आप जानते हैं मूलतः कारण और प्रभाव। ठीक है, कारण भय है, परिणाम उसकी सेवा करना और उसकी आज्ञा का पालन करना है। सेवा और आज्ञा पालन के इस विचार में आज्ञाकारिता का संबंध देखिए। तो यह संबंध है, भय मानो, सेवा करो, और आज्ञा मानो, उसकी आज्ञा मानो। और यदि तुम प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध विद्रोह नहीं करोगे, और यदि तुम और तुम पर शासन करने वाला राजा, दोनों ही प्रभु, अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, तो सब ठीक रहेगा। लेकिन यदि तुम प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करोगे और उसकी आज्ञा के विरुद्ध विद्रोह करोगे, तो प्रभु का हाथ तुम्हारे विरुद्ध होगा, जैसे तुम्हारे पिता के विरुद्ध था। इसलिए शमूएल ने यहोवा को पुकारा, और उस दिन यहोवा ने गरज और बारिश बरसाई। तो हे परमेश्वर, वे एक राजा बना रहे हैं। यह शमूएल 12 में है, और शाऊल को इसराइल का पहला राजा बनाया जाएगा, और इसलिए शमूएल भविष्यवक्ता शाऊल का अभिषेक करने वाला है, और इसलिए वह उन्हें बता रहा है, देखो नया राजा ऐसा होगा। क्या तुम उस राजा को चाहते हो? देखिए क्या होने वाला है। परिणाम स्वरूप वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, और गरज और बारिश होती है। ईश्वर की ओर से एक ईश्वरीय प्रतिक्रिया वास्तव में गरज और बारिश में भौतिक रूप से प्रकट होती है। परिणाम स्वरूप सभी लोग यहोवा और शमूएल से बहुत डर गए। उन्होंने शमूएल से विनती की, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, अपने सेवकों के लिए प्रार्थना कर कि हम न मरें। परमेश्वर की यह उपस्थिति एक बार फिर प्रकट हुई, और जवाब मिला कि हम मर जाएंगे। फिर से एक भयावह जवाब, क्योंकि हमने अपने सारे पापों के साथ राजा मांगने की बुराई भी जोड़ ली है। खैर, शमूएल सामने आता है। शमूएल ने कहा, डरो मत, भले ही तुमने ये सब बुरे काम किए हों, फिर भी यहोवा के पीछे चलना मत छोड़ो और पूरे मन से उसकी सेवा करो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पाप न करूं। मैं तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग सिखाता रहूंगा। सबसे बढ़कर 12:24, सबसे बढ़कर यहोवा का भय मानो और उसकी सेवा सच्चाई से करो। फिर से यहोवा का भय मानो और पूरे मन से उसकी सेवा सच्चाई से करो और सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कितने बड़े काम किए हैं। लेकिन अगर तुम बुराई करते रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। शाऊल। कुछ और आयतें भी यही दर्शाती हैं कि सजा से डर पैदा होता है। ठीक है, एक राजा अध्याय एक आयत 50 में यशाया और अदोनिया सुलेमान से डरते हैं। ठीक है, और क्या तुम्हें याद है कि अदोनिया खुद को राजा बनाने और सुलेमान से राजपद छीनने की कोशिश कर रहा था, और नातान और बतशेबा दाऊद के पास गए और पूछा, दाऊद अदोनिया खुद को राजा क्यों बना रहा है? और फिर दाऊद ने सुलेमान से बात की और सुलेमान को अपने गधे पर सवार करके यरूशलेम ले जाने को कहा, और वह वहां से किद्रोन घाटी में चला गया। और अदोनिया जानता था कि उसका हंस पक गया है। और खैर, अदोनिया सुलेमान से डरता था उसी शब्द से, इसलिए वह उठा और वेदी के अनुसार चला गया। फिर से उसे सजा का डर था। राजा सुलेमान अब राजा बन चुका है और उसे अपने भाई द्वारा इसराइल का राजपाट हड़पने या तख्तापलट करने की कोशिश करने के लिए सजा मिलने वाली है। नहमाया 2:02 में राजा ने मुझसे कहा, जब तुम बीमार नहीं हो तो तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? यह दिल की उदासी के अलावा और कुछ नहीं है। तब मैं नहमाया बहुत डर गया। उसने कहा, अरे राजा ने मुझे देख लिया, वह राजा का पिलाने वाला है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए शराब नहीं चखना चाहता कि राजा को जहर वगैरह न लग जाए, इसलिए वह आदमी नहमायाह को उदास चेहरे से देखता है। ऐसा लगता है जैसे आप नहीं चाहते कि राजा यह देखे, क्योंकि राजा सोचेगा कि कोई मुझे जहर देने की साजिश रच रहा है। और नहमायाह इस बात से दुखी है क्योंकि वह मेरा दोस्त है। ठीक है, तो नहमायाह बहुत डर गया था क्योंकि राजा ने देखा कि वह उदास है, इसलिए नहमायाह को यह बताना होगा कि वह क्यों उदास है और लोगों को वापस लाना होगा, कुछ लोगों को बेबीलोन से निकालकर इसराइल वापस लाना होगा वगैरह। तो फिर से सजा का डर। ठीक है, भजन संहिता अध्याय, मैं इसे यहाँ पढ़ता हूँ। तो यहाँ एक शमूएल 12 में उसी पर वापस जाते हुए दो प्रकार के भय की तुलना की गई है, लोग सेवा और आज्ञाकारिता के अर्थ में परमेश्वर का भय मानने में असफल रहे, लेकिन अंतः ईश्वरीय दंड के अर्थ में परमेश्वर का भय मानने लगे। तो एक शमूएल 12 के अंश में वास्तव में दो प्रकार के भय विकसित हुए, परमेश्वर का भय जो मूल रूप से उन्हें परमेश्वर की सेवा और आज्ञाकारिता के लिए प्रेरित करता था, यही ईश्वर का भय था जिसने उन्हें सेवा और आज्ञाकारिता के लिए प्रेरित किया। लेकिन फिर इस पर एक नाटक है। इस शब्द का दूसरा प्रयोग भय के रूप में होता है, न्याय, दंड और भय के संदर्भ में। इसलिए संदर्भ के प्रति सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि आज्ञाकारिता और परमेश्वर की सेवा के दो अलग अलग अर्थ एक ही तरह के आरंभ और अंत में दंड के प्रति परमेश्वर के भय के साथ तुलना करते हैं। इसलिए लोग सेवा और आज्ञाकारिता के अर्थ में परमेश्वर का भय मानने में असफल रहे, लेकिन अंततः अपने पापों के कारण दंड और दंड के भय के संदर्भ में परमेश्वर का भय मानने लगे। दंड का यह भय पश्चाताप और ईश्वरीय राजा के प्रति वफादार सेवकों से कम हो जाता है। ठीक है, भजन संहिता अध्याय 130 श्लोक 4 में दंड के एक और भय को छोड़ दिया गया है, और यहाँ लिखा है, हे प्रभु यदि तू हमारे अधर्म के कामों का लेखा जोखा रखता तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता, लेकिन आपके साथ क्षमा इसलिए है ताकि लोग आपसे डरें। और यहाँ यह बहुत दिलचस्प है, क्षमा और भय, क्षमा और भय के बीच के संबंध पर ध्यान दीजिए। ईश्वर व्यक्ति को क्षमा करता है, उससे डरना चाहिए क्योंकि वह क्षमा करने में सक्षम है, और इसलिए हम असहाय स्थिति में हैं। हम असहाय और दीनहीन स्थिति में हैं। इसलिए हमें मूलतः ईश्वर द्वारा क्षमा किए जाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और इसीलिए क्षमा का नियंत्रण ईश्वर के पास है, और इसलिए हम उससे इस अर्थ में डरते हैं क्योंकि वह क्षमा करने और दंड देने में भी असमर्थ है। ठीक है, हम इसे नए नियम के कुछ दृष्टांतों में देखते हैं। अब मैं अन्य प्रकार के भय की ओर बढ़ना चाहता हूँ, न कि केवल रहस्य की ओर। भय का प्रकार या दंड का भय, बल्कि भय के पंथीय अनुष्ठानों के प्रति, और यह भय का अधिक पंथीय, कानूनी और नैतिक प्रकार है। पंथीय अनुष्ठानों में ईश्वर का भय, यानी जब मैं इस अर्थ में भय की बात कर रहा हूँ, तो ईश्वर के भय का अर्थ है सेवा करना, आज्ञा मानना और आराधना करना। तो एक पंथीय संदर्भ में हमारे पास पवित्र स्थान, बलिदान, पूजा की धारणा और सेवा और आज्ञाकारिता की धारणा है। ईश्वर का भय ही आज्ञाकारिता है। ईश्वर का भय आज्ञाकारिता को प्रेरित करता है। ठीक है, तो परमेश्वर का भय ही उसकी आज्ञाकारिता को प्राप्त करने का साधन है। दूसरा राजा अध्याय 17 आयत 25 और 41 पद 25 में लिखा है, और जब वे वहां बसने लगे तो उन्होंने यहोवा का भय नहीं माना, यहोवा का भय नहीं माना, इसलिए यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे और उनमें से कुछ को मार डाला। तब अश्शूर के राजा को यह समाचार मिला, जिन जातियों को तूने बंदी बनाकर सामरिया के नगरों में बसाया है, वे उस देश के परमेश्वर की व्यवस्था नहीं जानते, इसलिए उसने उनके बीच सिंह भेजे और देखो वे उनमें से कुछ को मार रहे हैं, क्योंकि वे उस देश के परमेश्वर की व्यवस्था नहीं जानते थे। तब अश्शूर के राजा ने उस देश के परमेश्वर की व्यवस्था के याजकों में से एक को भेजने की आज्ञा दी। सो जिन याजकों को वे सामरिया ले गए थे, उनमें से एक आकर बेतेल में रहने लगा और उन्हें यहोवा का भय मानने की शिक्षा देने लगा, यहोवा का भय मानने की शिक्षा देने लगा। ठीक है, तो अश्शूर का राजा नीचे आता है, झपट्टा मारता है और सामरिया पर कब्जा कर लेता है। 721-722 ईसा पूर्व में अश्शूर का क्रूर राजा उन्हें ले जाता है। गरीब लोग देश में ही रह गए। जब अश्शूर का राजा यहूदियों को ले गया तो शेरों की संख्या बढ़ गई और उन्होंने कुछ लोगों को मारना शुरू कर दिया, लेकिन फिर वह दूसरे लोगों को भी ले आया और उन्हें सामरिया देश में वापस भेज दिया। इस तरह इस समय इसराइल में अश्शूर के राजा और उस समय के गरीब मूल यहूदियों द्वारा लाए गए कुछ विदेशी लोग आए और वे आपस में विवाह करके सामरी बन गए। ठीक है, तो होता यह है कि शेर खाना शुरू कर देते हैं और लोग कहते हैं, अरे यार, इस देश के देवता, ये शेर हमें खा रहे हैं। हमें ध्यान रखना होगा, हमें इस देश के ईश्वर का आदर करना चाहिए। और आप मूलतः ऐसा कैसे करते हैं? तो अश्शूर के राजा ने कहा, ठीक है, मुझे एक यहूदी पुजारी, कोहेन जो भी हो, लाकर दो और वह लोगों को सिखाएगा कि इसराइल के ईश्वर के लिए बलिदान, पूजा और पंथ कैसे करें। और इस तरह शेर ऐसा करना बंद कर देंगे। लेकिन गौर कीजिए कि वे इसे क्या कहते हैं। वे उन्हें सिखाएंगे कि उन्हें प्रभु का भय कैसे मानना चाहिए। उन्होंने उन्हें कैसे सिखाया? गौर कीजिए कि आप प्रभु का भय सिखा सकते हैं। अब प्रभु के भय की शिक्षा उन आदेशों और आज्ञाओं की शिक्षा है जिनका पालन करने का आदेश परमेश्वर ने दिया है, और इसे ही परमेश्वर का भय कहते हैं। इसलिए परमेश्वर का भय उन आज्ञाओं को लागू करने का एक माध्यम है जो परमेश्वर ने दी हैं, और उन आज्ञाओं को सिखाया जाना चाहिए, कानूनों और आदेशों को सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, तो परमेश्वर का भय वास्तव में उन आज्ञाओं का संदर्भ देता है। लेकिन फिर भी हर राष्ट्र ने अपने अपने देवता बनाए और उन्हें सामरियों द्वारा बनाए गए ऊंचे स्थानों के मंदिरों में स्थापित किया। हर राष्ट्र ने अपने अपने नगरों में जहां वे रहते थे। बाबुल के लोग सुक्कोत मनाते थे और वे यहोवा का भय मानते थे। उन्होंने अपने बीच से हर तरह के लोगों को ऊंचे स्थानों का पुजारी नियुक्त किया और उनके लिए मंदिरों और ऊंचे स्थानों पर बलिदान चढ़ाए। इस प्रकार वे यहोवा का भय तो मानते थे, लेकिन अपने देवताओं की भी सेवा करते थे। तो आप यहां अपने देवताओं की सेवा और परमेश्वर के भय के बीच समानता देख सकते हैं। परमेश्वर का भय इसराइल के परमेश्वर यहोवा की सेवा कर रहा था और वे अन्य देवताओं की भी सेवा कर रहे थे। लेकिन इसमें एक प्रकार का परमेश्वर का भय, प्रभु का भय और साथ ही अपने देवताओं की सेवा भी शामिल है। उनके बीच के राष्ट्रों के अनुसार वे बहक गए प्रतीत होते हैं। आज तक वे पहले वाली बात पर अमल करते हैं। वे यहोवा का भय नहीं मानते और न ही उन विधियों, नियमों, व्यवस्था या आज्ञाओं का पालन करते हैं जो यहोवा ने इसराइलियों या याकूब की संतान को दी थीं, जिन्हें उसने इसराइल नाम दिया था। इसलिए परमेश्वर का भय इन विधियों, आज्ञाओं और व्यवस्थाओं का पालन करना था, और वह था ईश्वर का भय। तो इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, तो एक शमूएल या दो राजा 17 में परमेश्वर का भय मानने का यह पंथीय भाव। इसी तरह परमेश्वर के पालन का पंथीय भय और वास्तव में एक पंथीय चीज का अभिशाप। और मैं कहता हूँ सभोपदेशक 5:7 परमेश्वर कहते हैं, अरे ऐसा मत करो सभोपदेशक, उपदेशक, चाहे आप इसे वहाँ जो भी कहें। मूलतः परमेश्वर के सामने ये सारी प्रतिज्ञाएं मत करो, क्योंकि तुम एक मनुष्य हो। परमेश्वर के सामने ये सारी प्रतिज्ञाएं मत करो। वह नहीं चाहता कि आप मूर्ख बने। या जब स्वप्न बढ़ते हैं, सभोपदेशक 5:7 और शब्द बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप परमेश्वर के सामने होते हैं और आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिसकी मुझे यहां अक्सर चिंता होती है, तो यह घमंड है। परंतु परमेश्वर ही है जिसका तुम्हें भय मानना चाहिए। परंतु परमेश्वर ही है जिसका तुम्हें भय मानना चाहिए। तो मलाकी अध्याय 2:5, ठीक है, मलाकी 2:5, मैं इसे मलाकी 2:04 में पढ़ता हूँ, ताकि तुम जान सको कि मैंने यह आज्ञा तुम्हारे पास इसलिए भेजी है कि लेवी के साथ मेरी वाचा स्थिर रहे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैंने उसके साथ जो वाचा बांधी थी वह जीवन और शांति की थी। मैंने उसे ये सब दिया। यह भय की वाचा थी और वह मुझसे डरता था। वह मेरे नाम का भय मानता था। हाँ, उसके मुंह में सच्ची शिक्षा थी। परमेश्वर के भय और परमेश्वर द्वारा दी गई शिक्षा के बीच के संबंध पर ध्यान दीजिए, और उसके मुंह से कोई भी बुराई नहीं निकली। वह मेरे साथ शांति और प्रकाश में चलता था और उसने बहुतों को अधर्म से, पाप से दूर कर दिया। परमेश्वर के भय को पाप से दूर करते हुए ध्यान दीजिए, क्योंकि याजक के होठों को ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए और लोगों को उसके मुख से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और यह वाचा की शर्तों की शिक्षा और परमेश्वर के भय के बीच के अंतर संबंध के संदर्भ में है। तो परमेश्वर का यह भय भविष्यवक्ताओं में एक तरह से व्याप्त है, जैसा कि हमने देखा है। यह सभी अलग अलग तरीकों से व्याप्त है। अब आज्ञाकारिता के संदर्भ में परमेश्वर का भय, ठीक है। अब परमेश्वर का भय आदर और श्रद्धा है। अब यही तो सबको पसंद है, ठीक है। तो इस प्रकार का भय लैव्य व्यवस्था अध्याय 19:29-30 में है। लैव्य व्यवस्था 19:21-30। अपनी बेटी को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना, कहीं ऐसा न हो कि देश वेश्यावृत्ति में फंस जाए और अधर्म से भर जाए। 19:30 तू मेरे विश्राम दिनों को मानना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। यही भय है। वहां श्रद्धा शब्द असल में हमारा शब्द है यारे, जो भय का मूल है, यारे अडोनाई, यारेत अडोनाई। इसकी श्रद्धा मेरे पवित्र स्थान की श्रद्धा। अब क्या तुम पवित्र स्थान से डरते हो या श्रद्धा करते हो? तुम पवित्र स्थान से नहीं डरते। अभयारण्य कोई ऐसा कुत्ता नहीं है जो आपके पीछे आ रहा हो या ऐसा ही कुछ। आप उसका संदर्भ दे रहे हैं। आप सम्मान दिखाते हैं। आप सम्मान दिखाते हैं। सम्मान सम्मान, ठीक है, जैसा कि गाने में कहा गया है, और आप इसका सम्मान करते हैं। और पवित्र स्थान का आदर करना था और भय शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर से लक्ष्य आदर ही है। अध्याय 26 पद 2 लैव्य व्यवस्था 26:2, तुम अपने लिए मूर्तियां नहीं बनाना, नहीं कोई प्रतिमा या स्तंभ खड़ा करना। तुम अपने देश में दंडवत करने के लिए कोई नक्काशीदार पत्थर खड़ा न करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिन को मानना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना और उसका भय मानना। मैं यहोवा हूँ। अगर तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं का पालन करो तो पवित्र स्थान का भय मानो, उसका आदर करो, श्रद्धा करो और भी कई तरह की श्रद्धा करो और उससे डरो। उम्मा फिर से लैव्य व्यवस्था के अध्याय 19 में, तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने पिता का आदर करेगा या अपनी माँ और पिता से डरेगा। और तुम मेरे विश्राम दिन को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। श्लोक 30, तुम मेरे विश्राम दिन को मानना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, जैसा कि हमने अभी देखा। तो माता पिता को आप जानते ही हैं, अपने माता पिता से डरना चाहिए। आप अपने माता पिता से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे ही सजा देते हैं। तो यह पहलू एक भूमिका निभाता है, लेकिन वह यहाँ इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। फिर से संदर्भ ही अर्थ निर्धारित करता है। यहाँ वह जो कहना चाह रहे हैं वह यह है कि वे चाहते हैं कि हम उनके पिता और माता का आदर करें। और उम्मा तो यही सम्मान और उम्मा श्रद्धा का अर्थ है। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रभु ईश्वर का भय सिखाया जा सकता है। ठीक है। और यह हां, मुझे ईश्वर के भय की शिक्षा की इस अवधारणा को विकसित करने दीजिए। जाहिर है इसे सिखाया जा सकता है। ईश्वर का भय सिखाया जा सकता है। अब जब आप कहते हैं कि इसे सिखाया जा सकता है, तो हम उस भयानक भय की बात नहीं कर रहे हैं जो ईश्वर और इनमें से कुछ अन्य चीजों के प्रत्यक्ष दर्शन होते ही तुरंत उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जहां तक नियमों की बात है, अगर भय परमेश्वर के नियमों, व्यवस्थाओं, आज्ञाओं और आदेशों के पीछे खड़ा है या उन्हें लागू करने का माध्यम है, तो उन्हें सिखाया जा सकता है। और इसलिए भजन संहिता 34 पद 11 और उसके आगे लिखा है, हे बालकों आओ मेरी सुनो, मैं तुम्हें प्रभु का भय मानना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें प्रभु का भय मानना सिखाऊंगा। ऐसा कौन है जो जीवन की अभिलाषा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देख सके? ध्यान रहे, वह इसे कैसे सिखाएगा? यहां वह परमेश्वर का भय सिखा रहा है। यह क्या है? वह यही सिखा रहा है, अपनी जुबान को बुराई से दूर रखो। और आप देखेंगे कि हम नीतिवचनों और अन्य बातों में इस पर जोर देंगे। ईश्वर का भय बुराई से घृणा है। तो ईश्वर का भय, जो अच्छी चीज है, बुराई से घृणा है। और इस तरह ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक ईश्वर से डरता है, दूसरा बुराई से घृणा करता है। और इसलिए ये जुड़े हुए हैं और यही जुड़े हुए हैं। अपनी जुबान को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोको। बुराई से दूर रहो और भलाई करो। शांति की खोज करो और उसका पीछा करो। ठीक है, तो वह यहाँ भजन 34:11 और उसके बाद के पदों में परमेश्वर का भय सिखा रहे हैं। जैसा कि हमने कई बार देखा है, ईश्वरीय निर्देश और परमेश्वर के भय के पर्यायवाची के बीच यह संबंध है। ईश्वरीय निर्देशों या आदेशों और नियमों के बीच यह दिव्य संबंध व्यवस्था विवरण 6:1-2 में पाया जाता है। अब ये आज्ञाएं, विधियां और नियम जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मुझे तुम्हें सिखाने की आज्ञा दी है, ताकि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसका तुम अधिकारी होने जा रहे हो। मैं तुम्हें वे नियम सिखाऊंगा जिनका पालन करके तुम अपने परमेश्वर यहोवा का और ऐसा लग रहा है। यहोवा तुमसे क्या चाहता है? यहोवा तुमसे क्या चाहता है? बस अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। परमेश्वर का भय मानने का क्या अर्थ है? उसके सब मार्गों पर चलना, उससे प्रेम करना, अपने पूरे मन और पूरे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना और यहोवा की आज्ञाओं और विधियों को मानना जो मैं आज तुम्हारे भले के लिए तुम्हें सुनाता हूँ। व्यवस्था विवरण 31:12-13। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करो कि वे सुनें और सीखें, कि वे सुनें और अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना सीखें। दूसरे शब्दों में मूसा ये बातें कहेगा। ये लोग यहोवा के वचन, उसके पराक्रम, उसकी विधियों और आज्ञाओं को सुनेंगे और वे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानेंगे। इस व्यवस्था के सभी वचनों का पालन करने में सावधानी बरतें, ताकि उनके बच्चे, जिन्होंने इसे नहीं जाना, सुनकर भय मानना सीखें। इस प्रकार विधियों और आज्ञाओं के इस अर्थ में भय का एक अंश सुनने से आता है। हम ज्ञान साहित्य के साथ भी ऐसी ही बातें देखेंगे। सुनो, जब तक हम उस देश में रहते हैं जिस पर तुम यर्दन नदी पार करके अधिकार करने जा रहे हो, तब तक अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना सीखो। ठीक है, अब ईश्वरीय भय ईश्वर के निर्देशों के अनुसार जारी है। यह बहुत सुंदर है। यह भजन संहिता अध्याय 19 है। और यह ठीक है, मुझे बस यह सुनिश्चित करने दीजिए कि मैं यहां सही जगह पर पहुंचूं। भजन संहिता 19:9। यह भजन संहिता 19 है। अद्भुत भजन। आकाश परमेश्वर की महिमा का बखान करता है। आकाश परमेश्वर की महिमा का बखान करता है। आकाश हमें कहीं भी दिखाता है। दिन प्रतिदिन वाणी का विषय है। रात्रि रात ज्ञान का स्रोत है। उस धरती पर कोई वाणी, भाषा या आवाज नहीं है, लेकिन यह सृष्टि में है। फिर श्लोक 9 में, यह सृष्टि से हटकर, जहां परमेश्वर सृष्टि से बात कर रहा है, अब परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर जाता है। ठीक है, और यहां जो होने वाला है वह यह है कि आपके पास एक दिव्य निर्देशात्मक प्रकार होगा जिसका नाम रखा जाएगा, और गुण यह है कि आपको परिणाम और प्रभाव, परिणाम और प्रभाव, परिणाम और प्रभाव मिलेगा। ठीक है, तो परिणाम एक दिव्य निर्देश है। ठीक है, प्रभु का नियम। ठीक है, प्रभु का नियम पूर्ण है। ठीक है, तो आपको ईश्वरीय निर्देश और समानता मिल गई है और परिणाम की ओर ले जा रही है। माफ करना, मैंने इसे गलत कर दिया। एक दिव्य निर्देश, कानून, आदेश, आज्ञाएं। आपके पास एक दिव्य निर्देश होगा, उसकी गुणवत्ता बताइए और फिर लोगों के जीवन पर उसका परिणाम और प्रभाव डालिए। प्रभु का नियम, प्रभु का नियम, यही हमारा दिव्य निर्देश है। उत्तम है, गुणवत्ता, परिणाम, आत्मा को पुनर्जीवित करता है। प्रभु की गवाही, दिव्य निर्देश, गुण, निश्चित परिणाम है जो सरल लोगों को बुद्धिमान बनाता है। प्रभु के उपदेश, दिव्य निर्देश, सही, गुण, परिणाम और प्रभाव हैं जो हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु की आज्ञा दिव्य निर्देश शुद्ध गुण परिणाम है जो आंखों को प्रकाशित करता है। हमने यही किया है। ईश्वर का भय प्रभु का भय शुद्ध है। प्रभु का भय ईश्वरीय निर्देश है। इसका गुण शुद्ध है, सदा स्थायी है, यही परिणाम है। तो क्या आप देखते हैं कि ये सभी ईश्वरीय निर्देश विधियां नियम आज्ञाएं हैं और ईश्वर का भय उनमें से एक के रूप में वर्णित है जो ईश्वरीय निर्देश के रूप में इसके बिल्कुल समानांतर है। और इसका गुण है, इसका गुण शुद्ध है, स्वच्छ है, यह सही है और यहाँ इस मामले में यह शुद्ध है और फिर इसका परिणाम सदास्थायी है और फिर इसका पालन प्रभु के नियमों के समानांतर किया जाता है, यानी फिर से दिव्य निर्देश इसकी गुणवत्ता प्रभु के नियम सत्य हैं। और फिर परिणाम क्या होता है? और पूरी तरह से धर्मी। तो अंत में वह एक तरह से दिव्य निर्देश गुणवत्ता गुणवत्ता करता है और श्लोक 9 में पैटर्न को तोड़ता है जो वहां एक जोर दिखाता है। तो खैर, परमेश्वर का भय अन्य स्थानों पर दिव्य निर्देश है। यशाया अध्याय 29 पद 13 में प्रभु ने कहा, क्योंकि लोग मुंह से तो मेरे निकट आते हैं और होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। बहुत ही रोचक कथन। और उनका मुझसे डरना मनुष्यों द्वारा सिखाई गई एक आज्ञा है। उनका मुझसे डर, डर और आज्ञा के बीच के संबंध पर गौर कीजिए। वह मूलतः कह रहे हैं कि ईश्वर का भय ईश्वर का एक निर्देश है, मनुष्यों द्वारा सिखाई गई आज्ञा है। ठीक है, यह दूसरी राय के नियम से बहकाया जा रहा है, ठीक है। और हम प्रभु की आज्ञाओं के बजाय उनकी सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट पर जाते हैं। सभोपदेशक 12 पद 13 सभोपदेशक की पुस्तक का अंतिम भाग। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है, शायद सभी इसे जानते हैं। आखिरकार सारी बात सुन ली गई। ईश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। आप ईश्वर के भय और आज्ञाओं के बीच संबंध देख सकते हैं। परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर हर एक काम का न्याय करेगा और इस तरह आपको हर गुप्त बात, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, के साथ दंड जैसी चीज के आने का विचार मिलता है। और इस तरह सभोपदेशक का अंत होता है। और परमेश्वर के भय का इन आज्ञाओं, परमेश्वर के आदेशों से संबंध है। अब मैं आगे काम करना चाहता हूँ, ईश्वर के भय को आज्ञाकारिता के एक प्रतीक या रूपक के रूप में जोड़ने के विचार पर। और भजन संहिता 119 के अध्याय में आपको भजन संहिता 119 याद होगा, जहाँ एक शानदार अक्षर चिन्ह है, 8 पद हालेल से शुरू होकर 8 पद पूरी वर्णमाला में 8 पद, और फिर वहाँ एक अक्षर चिन्ह है, शानदार भजन संहिता 119, जो बाइबल का सबसे लंबा भजन है। वैसे बाइबल में दूसरा सबसे लंबा भजन कौन सा है? डेविड इमैनुएल ने मुझे यह सिखाया था। बाइबल में दूसरा सबसे लंबा भजन भजन 78 है। बहुत दिलचस्प है। तो ठीक है, लेकिन भजन संहिता 119:63 कहता है, मैं उन सबका साथी हूँ जो तेरा भय मानते हैं, तेरे उपदेशों को मानते हैं, इसलिए अपने उपदेशों का पालन करना या आज्ञाकारिता उन सब के समान है जो तेरा भय मानते हैं। जो तेरा भय मानते हैं वे ही तेरे उपदेशों का पालन करते हैं। तो परमेश्वर के आदेश मूलतः उनका पालन करना परमेश्वर के भय के समान है। भजन संहिता 128 पद 1, धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो परमेश्वर का भय परमेश्वर के मार्गों पर चलने के समान है। फिर से आज्ञाकारिता, तुम्हें अपने हाथों के परिश्रम का फल मिलेगा। परमेश्वर के भय की इस धारणा पर कुछ और बातें हैं, आज्ञाकारिता। दूसरा शमूएल 23:3 इसराइल के परमेश्वर ने कहा है, इसराइल की चट्टान ने मुझसे कहा है, इसराइल की चट्टान। देखो यह एक रूपक है ना? परमेश्वर एक चट्टान का विषय है। जब कोई ईश्वर के भय से मनुष्यों पर न्यायपूर्वक शासन करता है तो उसे मेटोनिमी कहते हैं। ईश्वर के भय से शासन करना, ठीक है, उसके उपदेशों और अन्य बातों के अनुसार शासन करना। वह उन पर छा जाता है, वह उन पर सुबह की रोशनी की तरह छा जाता है। गौर कीजिए कि वह कैसे रूपक से हट जाता है। ठीक है, ईश्वर का भय, ईश्वर के भय में शासन कर रहा है। और फिर वह पूछता है, यह कैसा है? और फिर वह एक रूपक का उपयोग करके इसे विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग चीजों पर लागू करता है, न कि ईश्वर के भय में शासन करते हुए उन उपदेशों और चीजों पर जो एक राजा या स्वयं ईश्वर आदेश, आज्ञाएं और कानून देता है। यह इस तरह है, लेकिन फिर वह इसे छोड़ देता है। यह कैसा है? वह इन उपमाओं या उपमाओं का प्रयोग रूपक के रूप में करते हैं, जैसे सुबह का प्रकाश, जैसे बादल रहित सुबह में सूर्य की चमक, जैसे बारिश जो धरती से घास उगाती है। और इसलिए वह यहाँ तीन उपमाएं देते हैं, जैसे सुबह का प्रकाश, जैसे बादल रहित सुबह की चमक और जैसे बारिश, और मूल रूप से इसे ईश्वर के भय पर शासन करने के रूपक के कथन में विकसित करते हैं और इसे अपने जैसे सभी रूपों में जोड़ते हैं और आपको इस तरह की कलात्मक सुंदर चीजें देते हैं जो रूपकात्मक तरीके से रूपक और रूपक का मिश्रण है। और खैर, यह एक दिलचस्प बात है। अब आज्ञाकारिता, अब यह एक बड़ी बात है, आज्ञाकारिता। अकीदा क्या है? मैं कहता हूं अकीदा, और आप यहूदी हैं, सब जानते हैं कि यह उत्पत्ति 22 है, उत्पत्ति 22 प्रसिद्ध अकीदा अंश। अकीदा का अर्थ है बांधना, इसहाक को बांधना। और आपको याद होगा कि परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी थी कि वह अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लेकर एक पहाड़ पर जाए, जहां से वह उसे उत्तर दिशा में 3 दिन की यात्रा दिखाएगा, जो मूलतः यरूशलेम के आपके क्षेत्र के आसपास है, और वहां उसे बलि के रूप में चढ़ाए। मैं इसके कई अर्थों पर विचार करता हूं, जो मसीह और परमेश्वर द्वारा यरूशलेम के उस स्थान पर अपने पुत्र की बलि चढ़ाने की पूर्व सूचनाओं को भी दर्शाते हैं। तो अब्राहम को वहां ऊपर जाना पड़ा। अब्राहम अपने बेटे को साथ लेकर गया। आपको याद होगा कि वे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और इसहाक कुछ इस तरह कह रहा था, दादाजी, अरे पिताजी, आप यहां कुछ भूल गए। हमने आग जलाई और बलि चढ़ाने का सामान भी, लेकिन यार मेमना कहाँ है? यहाँ तो कोई मेमना ही नहीं है। और ऐसा लग रहा है, क्या आप ये भूल सकते हैं पापा? मतलब आप बूढ़े हो रहे हैं। मुझे पता है। खैर, माफ करना, मुझे इस तरह से पैरोडी नहीं करनी चाहिए। बस मुझे उत्पत्ति अध्याय 22 श्लोक 12 पढ़ने दो। उसने कहा, लड़के पर अपना हाथ मत रखना। तो अब्राहम चाकू लेकर हाथ उठाता है और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। और अब क्या हुआ? परमेश्वर बीच में आकर कहते हैं, उस लड़के पर हाथ मत रखना, नहीं उसे कुछ करना। अब मैं जानता हूं कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो, अब मैं जानता हूं कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो। यहां परमेश्वर का भय क्या है? क्या यह डर और कांपना भय है? नहीं, यह आज्ञाकारिता है। अब मैं जानता हूं कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो, यानी मेरी आज्ञा मानते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने बेटे इसहाक से प्यार करते हैं। अपने बेटे इसहाक को, जिससे आप प्यार करते हैं, अपने घर ले जाइए। खैर अब मुझे पता चल गया है। भगवान भी खुद को यहाँ कुछ सीखते हुए दिखाते हैं। मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता, यह एक अलग ही चर्चा है, लेकिन इसे नजरअंदाज मत कीजिए, यह एक बड़ी बात है। अब मुझे पता चल गया है कि तुम ईश्वर से डरते हो। इसका क्या मतलब है? क्या ईश्वर सीख सकता है? खैर, पर वह तो सब जानता है। ठीक है, हाँ हाँ, खेलो, चलो किसी और समय खेलते हैं। यह देखकर कि तूने अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी मुझसे नहीं रख छोड़ा, तब इब्राहिम ने आंखें उठाकर क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। आज्ञाकारिता। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने भरोसा किया और आज्ञा मानी। किसी गाने जैसा लगता है। ईश्वर का भय आज्ञाकारिता के अलावा एक व्यापक नैतिक भय भी हो सकता है, और ऐसा अक्सर विदेशियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये लोग इसराइल की वाचा से बाहर हैं, विदेशी, और इसमें लिखा है कि वे ईश्वर से डरते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। उत्पत्ति अध्याय 20 श्लोक 8 और 11। आपको याद होगा कि अब्राहम ने अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोला था। उसने कहा, अरे यार, हम पलिश्तियों के इलाके में जा रहे हैं। अबीमेलेक का राजा, अरे यार, राजा तुम्हें चाहेगा क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, और वैसे भी मान लो कि तुम मेरी बहन हो तो राजा मुझे नहीं मारेगा क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और उसे मेरी पत्नी पसंद है। ठीक है, तो उत्पत्ति अध्याय 20 श्लोक 8 में लिखा है, अबीमेलेक सुबह सुबह उठा और अपने सब सेवकों को बुलाकर उन्हें ये सारी बातें बताईं, और वे बहुत डर गए क्योंकि परमेश्वर ने सचमुच अबीमेलेक के लिए स्वप्न और अन्य बातें देखी थीं। और अब्राहम कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि इस जगह पर ईश्वर का जरा भी डर नहीं है, और वे मेरी पत्नी की वजह से मुझे मार डालेंगे। ईश्वर का कोई डर नहीं है, यह इन लोगों का एक सामान्य नैतिक चरित्र है, और चूंकि तुम में सामान्य नैतिक चरित्र नहीं था, इसलिए मुझे पता है कि तुम लोग वास्तव में उतने नैतिक नहीं हो, तो तुम मुझे मार सकते हो और मेरी पत्नी को ले जा सकते हो। ठीक है, उत्पत्ति 42:18। यूसुफ कहता है, याद रखो, वह अपने भाइयों के साथ खेल रहा है। उसके भाई मिस्र में उसके पास आते हैं और वे इज़राइल में भूख से मर रहे हैं, और वे वहां आते हैं और यहां यूसुफ सिंहासन पर बैठा है मूलतः, और उसे ही उन्होंने मिस्र में बेच दिया था, लेकिन अब वह मिस्र में फिरौन के अधीन है, इसलिए यूसुफ छिप जाता है। वे नहीं जानते कि यह यूसुफ है। और फिर तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, ऐसा करो तो तुम जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। इसका असल मतलब क्या है? मैं एक नैतिक इंसान हूं और मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा और नहीं कोई बुरा काम करूंगा। मैं एक नैतिक इंसान हूं, और यह सामान्य नैतिकता की बात कर रहा है। लेकिन फिर से गौर कीजिए, अबीमेलेक असल में परमेश्वर का भय मानता था। वह एक पलिश्ती था। यहां यूसुफ को एक मिस्री के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन वह कहता है कि मैं ईश्वर का भय मानता हूं, यानी मेरी एक सामान्य नैतिकता है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा और न ही तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूंगा। अगर तुम ईमानदार आदमी हो तो अपने भाइयों में से एक को जहां तुम हो वहीं कैद रहने दो और बाकियों को छोड़ दो। अपने घराने के लिए अकाल के लिए अनाज ले जाओ। और यूसुफ ऐसे लोगों को परदेशी बना रहा है। और हम देखेंगे कि यह बात बार बार सामने आती है जहां उन्हें ईश्वर भक्त कहा जाता है। और दूसरे प्रकार का भय है साधारण धर्मप्रायणता। साधारण धर्मप्रायणता, पहला राजा 18 है पी स्माइली, क्षमा करें, पहला राजा 18:03, अहाब बनाम एलियाह नबी बाल के नबी कर्मेल पर्वत पर। अहाब ने ओबद्याह को बुलाया जो राजघराने का अधिकारी था। ओबद्याह यहोवा का बहुत भय मानता था। और उसके भय का प्रकटीकरण क्या है? और जब ईजेबेल ने यहोवा के सभी नबियों को मार डाला तो ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर उन्हें 50 शिलिंग के हिसाब से एक गुफा में छिपा दिया और उन्हें रोटी और पानी खिलाया। हे ओबद्याह, ईजेबेल यहोवा के नबियों को मार रही है। ओबद्याह असल में यहोवा के नबियों को इन गुफाओं में छिपाता है और उनकी देखभाल करता है और उन्हें भोजन उपलब्ध कराता है। और इसे ओबद्याह का प्रभु का भय मानना कहा जाता है। यह एक प्रकार का भय है, एक साधारण धर्मनिष्ठा कि वह एक धर्मप्रायण व्यक्ति है और वह परमेश्वर के लोगों, विशेष रूप से परमेश्वर के सेवकों, भविष्यद्वक्ताओं की देखभाल कर रहा है। भय एक गुण है। भय एक गुण है। अब हम ज्ञान साहित्य के करीब पहुंच रहे हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आइए अय्यूब की पुस्तक से शुरुआत करें। अय्यूब 1:01 उस देश में एक पुरुष था। उसका नाम अय्यूब था। वह खरा और सीधा था, निर्दोष और सीधा, सद्गुणी, निर्दोष, सद्गुणी, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला, सद्गुणी और बुराई से दूर रहने वाला। परमेश्वर के भय और बुराई के बीच के संबंध पर फिर से गौर कीजिए। ठीक है, तो यह अय्यूब की निर्दोषता की ओर इशारा कर रहा है। वह निर्दोष, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। अध्याय में और वास्तव में मैं अय्यूब 1:08 पढ़ता हूँ और यही अय्यूब की पुस्तक का संपूर्ण आधार बन जाता है। अय्यूब 1:08 और यही पूरी पुस्तक की नींव रखता है। ठीक है, तो परमेश्वर आकर कहते हैं, हे अय्यूब, वह खरा, धर्मी और परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य है। शैतान प्रकट होता है, शैतान। आप इसे चाहे जैसे भी लें। और प्रभु ने शैतान से, जो आरोप लगाने वाला है, कहा, या फिर जॉन वाल्टन के वीडियो सुने जो बाइबल लर्निंग पर उपलब्ध हैं, जहां शैतान के बारे में दिलचस्प बातें दी गई हैं। क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है जिसके बारे में परमेश्वर बड़ाई करता है? सारी पृथ्वी पर उसके समान कोई नहीं है जो खरा और सीधा हो और परमेश्वर का भय मानता हो। ध्यान दीजिए, वह निर्दोष, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला है, जैसा कि उसने 1 कहा था, और बुराई से दूर रहता है। फिर से इन सब बातों को मिलाकर इस व्यक्ति का सद्गुणी स्वभाव। और शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना कारण मानता है? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना कारण मानता है? यही अय्यूब की पुस्तक के शेष भाग का आधार बनता है। क्या अय्यूब बिना किसी कारण के परमेश्वर का भय मानेगा? और शैतान उसके सारे कारण छीन लेगा, उसके बच्चे, उसकी दौलत, यहां तक कि उसकी पत्नी भी उसके साथ हो जाएगी, ठीक है, उसके दोस्त वगैरह। तो क्या अय्यूब परमेश्वर की सेवा करेगा? क्या अय्यूब बिना किसी कारण के परमेश्वर का भय मानेगा? यह अय्यूब की पूरी किताब की बुनियादी बातों में से एक है। अय्यूब का पूरा पद इसी बात को स्पष्ट करता है। तो यह एक दिलचस्प बात है कि परमेश्वर का भय वहां कैसे काम करता है। अय्यूब 6:14, अय्यूब 6:14 कहता है, जो अपने मित्र पर दया नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय त्याग देता है। माफ कीजिए, तो यहां भी हमारे पास सद्गुण हैं। मेरे भाई तो नदी के पानी की तरह विश्वासघाती हैं। तो मूलतः अपने दोस्त के प्रति दयालुता दिखाने का ध्यान रखना ईश्वर का भय है। यह एक गुण है। तो आपके पास यह कारण, प्रभाव या उद्देश्य है, उद्देश्य ही भय है जो चरित्र की ओर ले जाता है। ईश्वर का भय इसी की ओर इशारा करता है। यहाँ 6:04 या 6:14 में यह दिलचस्प है कि हमारे पास इसके अलग अलग अनुवाद हैं। और देखते हैं कि क्या मैं इसे निकाल सकता हूँ। यह दिलचस्प है कि RSV, NLT और NIV ने अलग अलग अनुवाद किए हैं। हाँ, यह रहा। पहले अनुवाद को अलग अलग अनुवादों में एक ही आयत में ईश्वर के भय के अलग अलग अर्थों में देखा जा सकता है। अय्यूब 6:14 पहला उदाहरण NRSV में देखा जा सकता है, जहां अय्यूब कहता है, जो लोग अपने मित्र पर दया नहीं करते, वे सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देते हैं। यह उस बात की पुष्टि करता है जो हमने अन्यत्र देखी है, कि भय को जरूरतमंदों के साथ नैतिक व्यवहार के बराबर माना जाता है। NLT इसका अनुवाद इस प्रकार करता है, यह प्रतिशोध के भय की धारणा को बढ़ावा देता प्रतीत होता है। NLT कहता है, एक बेहोश दोस्त के साथ दयालु होना चाहिए, लेकिन तुम सर्वशक्तिमान से बिना किसी भय के मुझ पर आरोप लगा रहे हो। यानी तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो और तुम्हें इस बात का भी डर नहीं है कि परमेश्वर इस आदमी के लिए तुम्हारा न्याय करेगा। और इस प्रकार NLT प्रतिशोध के भय की ओर जाता है, जबकि पहला वाला सद्गुण के संदर्भ में भय था। और फिर अंत में NIV और NAT धर्मनिष्ठा की एक सामान्य भावना। एक निराश व्यक्ति को अपने मित्रों की भक्ति प्राप्त होनी चाहिए, भले ही वह सर्वशक्तिमान का भय त्याग दे। यानी वह धर्मनिष्ठा के सामान्य भाव को त्याग देता है। इसलिए यह दिलचस्प है कि परमेश्वर के भय का अनुवाद 3 अलग अलग तरीकों से किया गया है, NRSV, NLT और NIV। यह बहुत दिलचस्प है। ठीक है, अब ईश्वर का भय ही बुद्धि है। और यहाँ कुछ बातें हैं, ईश्वर के भय और बुद्धि के बीच का संबंध, और हम आगे इसी पर चर्चा करेंगे। अय्यूब अध्याय 28:12 कहता है, परंतु बुद्धि कहाँ मिलेगी, अय्यूब की पुस्तक 28 में। परंतु बुद्धि कहाँ मिलेगी, समझ का स्थान कहाँ है, तो फिर बुद्धि कहाँ से आती है और समझ का स्थान कहाँ है। पद 20 और पद 23 में परमेश्वर इसका मार्ग समझता है। और पद 28 में परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, इसलिए यह परमेश्वर मनुष्य से बात कर रहा है, अय्यूब 28। देखो, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। देखो, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझदारी है। फिर से प्रभु के भय और बुराई के मार्ग के विपरीत, उसके विपरीत के बीच का तना। बुद्धि एक गुण है। बुद्धि या परमेश्वर का भय एक सद्गुण है। भजन संहिता 111:10:9 से शुरू होता है, वह कहता है, हमने यह कहां सुना, नीतिवचन अध्याय 9:10। लीजिए भजन संहिता अध्याय 111:10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जो कोई उसका पालन करता है वह उत्तम समझ रखता है, उसकी स्तुति सदा बनी रहती है। परमेश्वर के भय और स्तुति के बीच संबंध पर ध्यान दीजिए। नीतिवचन अध्याय 8:13 प्रभु का भय बुराई से घृणा है। हमने इस तनाव को बार बार देखा है। प्रभु का भय नियमों का पालन करने और, आप जानते हैं, नियमों का पालन करने और बुराई से दूर रहने, बुराई से घृणा करने का एक प्रकार का प्रतीक है। प्रभु का भय बुराई से घृणा है। प्रभु का भय क्या है? प्रभु का भय बुद्धि है। प्रभु का भय बुद्धि है। प्रभु का भय क्या है? प्रभु का भय बुराई से घृणा है। मुझे घमंड, अहंकार, दुष्टता और विकृत बातों से घृणा है। इसलिए अब परमेश्वर स्वयं को पहचानते हुए कह रहे हैं, अगर तुम मेरा भय मानते हो तो तुम में भी वही गुण होंगे जो मेरे अंदर हैं, और मैं घमंड और अहंकार से घृणा करता हूँ। और इसलिए परमेश्वर के भय और अहंकार के बीच इस तनाव पर ध्यान दीजिए। मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि यह लाचारी है, और आपको एहसास होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते और ईश्वर सब कुछ नियंत्रित करते हैं। और इसलिए आपको एहसास होता है कि ईश्वर का भय एक राजा की तरह आपके जीवन के कई पहलुओं पर नियंत्रण रखता है। और मूलतः ईश्वर कहते हैं, मुझे उस घमंड और अहंकार से नफरत है जहां तक तुम सोचते हो कि तुम पहुंच गए हो। खैर, नीतिवचन अध्याय 8 श्लोक 13 में यही लिखा है। और हाँ, अब परमेश्वर का भय ही बुद्धि की शुरुआत है। इस विषय पर कुछ चर्चा हुई है और मैं इसे माइकल फॉक्स नाम के एक व्यक्ति से साझा करना चाहता हूँ जो नीतिवचन पर महान टीकाकारों में से एक हैं। हाँ, तो माइकल फॉक्स ने नीतिवचन पर अपनी विस्तृत व्याख्या में नीतिवचन अध्याय 1:7 के संबंध में विस्तार से बताया है। नीतिवचन पर दो बेहतरीन व्याख्याएं हैं। एक है ब्रूस वाल्टके की नीतिवचन पर दो खंडों वाली रचना। माइकल फॉक्स की नीतिवचन पर दो खंड भी बेहतरीन हैं। दोनों ही दो दो हैं। डेरेक किडन की एक छोटी और बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा एंड्रयू स्टाइनमैन की नीतिवचन पर एक बहुत अच्छी टिप्पणी भी है। और फिर मेरे एक दोस्त की लिखी एक और किताब है जो वाकई बेहतरीन है। बेहतरीन? ट्रेम्पर लॉन्गमैन ने नीतिवचन की किताब पर एक अच्छी खासी टिप्पणी लिखी है। और अगर आप उस दिशा में सोच रहे हैं तो ये नीतिवचन की किताब पर बेहतरीन टिप्पणियां होंगी। लेकिन माइकल फॉक्स यहाँ नीतिवचन 1:07 के संदर्भ में कहते हैं, प्रभु के ज्ञान के मूल से डरो, मूर्ख लोग बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। किस अर्थ में परमेश्वर का भय ज्ञान का मूल है या बुद्धि का मूल, जैसा कि अध्याय 9:10 कहता है, समय में प्रथम आदि। दूसरे शब्दों में यह पहला कदम है। तो ईश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत है या ज्ञान ज्ञान की शुरुआत है? ईश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत है, यानी यह पहला कदम है। यह एक पूर्वापेक्षा है, अगर आप कहें तो एक पूर्वापेक्षा पहला कदम। यह पहला कदम है जो आपको उठाना है। और ज्ञान की खोज के इस मार्ग पर दूसरे दृष्टिकोण का सिद्धांत, यानी पहला सिद्धांत जो ज्ञान की पहली शर्त है, इसका दूसरा दृष्टिकोण शुरुआत, ईश्वर के भय की शुरुआत ज्ञान की शुरुआत है, यानी यह पहले सिद्धांत के अर्थ में शुरुआत है। पहला सिद्धांत नींव आधार, ज्ञान का आधार और ज्ञान साहित्य ईश्वर का भय है। ठीक है, यह ज्ञान की शुरुआत है। शुरुआत का अनुवाद करने के बजाय यह मुख्य बात होगी, ज्ञान की नींव। ठीक है, यह ईश्वर का भय है। ठीक है, यह नींव है। यह आधारशिला है। यह इसका सिद्धांत है। तीसरा दृष्टिकोण यह होगा कि गुण का सबसे अच्छा या मुख्य भाग शुरुआत ही पहला भाग था। ठीक है, दूसरे शब्दों में ईश्वर का भय पहला भाग है। यह वही है, ओह मैं कैसे कहूं, यह दाव है, यह मुख्य पसली है। ठीक है, यह मुख्य पसली है। वैसे भी मुझे ये रूपक इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन यह मुख्य भाग है, यह मुख्य है, यह ज्ञान का मुख्य भाग है। ईश्वर का भय ही इसका मुख्य भाग है। ज्ञान के संदर्भ में ईश्वर का भय ही सर्वोच्च सिद्धांत है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो फॉक्स इन तीन विचारों को प्रस्तुत करने के बाद पहला समय या पूर्वापेक्षा, ज्ञान की नींव और सिद्धांत भाग, सबसे महत्वपूर्ण भाग, वास्तव में शुरुआत से जुड़ा है, यानी ज्ञान की खोज में पहला कदम, और मुझे इसका सम्मान करना होगा। उन्होंने इस पर बहुत काम किया है और यह बात सही भी लगती है। मुझे लगता है कि ईश्वर का भय वास्तव में इन तीनों सिद्धांतों के साथ काम करता है, लेकिन इस संदर्भ में मुझे लगता है कि शुरुआत यानी पहला कदम या पूर्वापेक्षा कहने में वह सही है। अब मैं बस ईश्वर के भय की ओर इशारा करना चाहता हूँ। इसका इस्तेमाल एक संरचनात्मक चिह्नक के रूप में और नीतिवचन की पुस्तक की संरचना के लिए किया गया है, और यह बहुत दिलचस्प है। नीतिवचन की पूरी किताब की संरचना में परमेश्वर का भय तीन महत्वपूर्ण स्थानों पर आता है। इसलिए नीतिवचन 1:07 में वह इस वाक्यांश से पुस्तक की शुरुआत करते हैं, जिससे हम सीखते हैं परमेश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत है। मूर्ख बुद्धि और ज्ञान का तिरस्कार करते हैं, इसलिए वह अपनी किताब खोलता है। ईश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत है। फिर वह पहले से 9वें भाग को समाप्त करते हैं, जहां ये सभी निर्देश, ये 10 निर्देश हैं जो वह अपने बेटे को देते हैं, जैसे एक पिता अपने बेटे से कहता है, जैसे एक माँ अपने बेटे से कहती है। और इस प्रकार पहले से 9वें अध्याय के 10 निर्देश लंबे प्रवचन हैं, जहां पिता अपने बेटे को निर्देश दे रहा है, मेरे बेटे मेरी आवाज सुनो। और फिर वह जाकर उन्हें दुष्ट पुरुषों के बारे में चेतावनी देता है, और वह उन्हें दुष्ट स्त्रियों के बारे में चेतावनी देता है। वह जाकर चेतावनी देता है और 8वें अध्याय में परमेश्वर की सृष्टि और बुद्धि का वर्णन करता है, और फिर बुद्धि का एक अत्यंत भव्य वर्णन, जहां बुद्धि स्वयं बोलती है और बताती है कि कैसे बुद्धि संसार की रचना और उसे व्यवस्थित करने में लगी रही। वह बुद्धि संसार को व्यवस्थित कर रही थी और ईश्वर के साथ एक शिल्पकार की तरह थी, जो ईश्वर द्वारा संसार की रचना का आनंद ले रही थी। और इसलिए यदि आप एक बुद्धिमान जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको ईश्वर द्वारा सृष्टि में रची गई व्यवस्था को जानना होगा और उसके अनुरूप स्वयं को ढालना होगा। नीतिवचन का 8वां अध्याय अद्भुत है, लेकिन ध्यान दें कि वह अध्याय 1:07 में परमेश्वर के भय से शुरू करते हैं और फिर अध्याय 9:10 में 10 निर्देशों वाले भाग का समापन करते हैं। बुद्धि का आरंभ प्रभु का भय है, यही बुद्धि का आरंभ है, तो वह इसी से शुरू और खत्म करता है। यह एक तरह का संरचनात्मक चिन्ह है। फिर जब आप नीतिवचन की किताब के अंत में जाते हैं, नीतिवचन 31, तो जैसे ही मैं नीतिवचन 31 कहता हूँ, सब लोग क्या सोचते हैं? खैर, मैं अपनी पत्नी के बारे में सोचता हूँ। ठीक है, नीतिवचन 31, एक गुणी स्त्री। ठीक है, लेकिन यह बात कैसे खत्म होती है? नीतिवचन 31:30 उसके अंत में, याद रखें, नीतिवचन 31 के अंत में गुणी स्त्री पर एक संक्षिप्ताक्षर है। इसमें इब्रानी वर्णमाला के 22 अक्षरों से 22 पद हैं। यह भजन संहिता 119 के एक्रोस्टिक जैसा ही एक एक्रोस्टिक है। और यहाँ लिखा है, मोहब्बत तो धोखा देती है और खूबसूरती व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रभु के भय और स्तुति के बीच के संबंध पर ध्यान दीजिए। और अब बात इस गुणी स्त्री की। मैं आपको बता दूं कि यह गुणी स्त्री शायद अध्याय 1-9 तक में वर्णित मैडम विजडम का जिक्र कर रही है, और यह किताब मैडम विजडम से शुरू होकर मैडम विजडम पर ही खत्म होती है। यह एक तरह का समावेश है, फिर से एक पुस्तक का अंत, और यह प्रभु के भय से शुरू होता है। यह अध्याय 9 प्रभु के भय के साथ समाप्त होता है, लेकिन फिर पूरी पुस्तक प्रभु का भय मानने वाली स्त्री के साथ समाप्त होती है। मुझे लगता है कि शुरुआत में मैडम विजडम और अंत में मैडम विजडम को जोड़ना चाहिए। तो यह एक दिलचस्प संरचनात्मक चिन्ह है। वैसे सभोपदेशक 12 में भी यही बात है। सभोपदेशक 12 इस पुस्तक का अंत कैसे करता है? सभोपदेशक व्यर्थ ही व्यर्थ, सब व्यर्थ है। हमें इस बात पर चर्चा करनी होगी कि हेवेल का क्या मतलब है। लेकिन ऐसा करने के बाद किताब के अंत में परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। किताब इसी तरह समाप्त होती है और इसलिए यह एक अंतिम बिंदु है। और इसलिए मुझे लगता है कि ईश्वर के भय के इस विचार की प्रमुखता की ओर इशारा करने वाले कुछ संरचनात्मक बिंदु हैं। अब ठीक है, तो हमने उन बातों को देख लिया है। अब मैं परमेश्वर के भय को एक गुण के रूप में समझना चाहता हूँ। और अब मैं कुछ उदाहरण देकर नीतिवचनों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करूँगा। नीतिवचन 2:5, नीतिवचन 2:4-5 होंगे। यदि तू बुद्धि को चांदी के समान ढूंढे और यदि तू बुद्धि को गुप्त धन के समान ढूंढे तो तू प्रभु के भय को समझेगा। ठीक है, तो आप ज्ञान की खोज करेंगे, आप इसे एक खजाने की तरह खोजेंगे और तब आप प्रभु के भय को समझेंगे। जाहिर है आप प्रभु के भय को समझेंगे, प्रभु का भय मानेंगे और ईश्वर का ज्ञान पाएंगे। तो प्रभु का भय ईश्वर के ज्ञान के समान है। तो अब सिर्फ डर और कांपने की बात नहीं रही, सजा का डर भी नहीं रहा। यह परमेश्वर को जानने और परमेश्वर के ज्ञान का भय है, क्योंकि प्रभु बुद्धि देता है, उसके मुंह से ज्ञान और समझ निकलती है। नीतिवचन अध्याय 8, श्लोक 13, श्लोक 12 और 13, मैं बुद्धि विवेक के साथ वास करती हूँ, मैं ज्ञान और विवेक पाती हूँ। प्रभु का भय बुराई से घृणा है। फिर ईश्वर का भय विपरीत प्रतिपक्ष बुराई से घृणा, अभिमान और अहंकार और बुरे मार्ग और विकृत वाणी से मुझे घृणा है। अभिमान और अहंकार, फिर से अभिमान ही है जो व्यक्ति को ईश्वर के भय से वंचित करता है। अब यहाँ एक दिलचस्प संबंध है और यह बहुत से लोगों के साथ होता है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे यह आयत याद हो गई और शायद आपको भी याद हो गई होगी। नीतिवचन अध्याय 3:5-6, तू अपनी समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और यही हमने बचपन में सीखा है, पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखो, यह एक सुंदर श्लोक है, और अपने सभी मार्गों पर उसे स्वीकार करो और वह तुम्हारे मार्ग सीधे करेगा। अगला श्लोक बहुत दिलचस्प है, श्लोक 7, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनो, अहंकार घमंड, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो, परमेश्वर का भय मानो और बुराई से दूर रहो। फिर से परमेश्वर के भय के साथ यह संबंध अब विनम्रता की ओर ले जाता है। ठीक है, अपनी नजरों में बुद्धिमान मत बनो। अपनी नजरों में बुद्धिमान होने का उल्टा है ईश्वर का भय मानना, यह एहसास करना कि तुम सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने हो और बुराई से दूर हो जाओ। बुराई से दूर रहना ही नैतिक और पुण्य है और यह तुम्हारे शरीर के लिए उपचार होगा। एक श्लोक में एक सुंदर श्लोक है। नीतिवचन अध्याय 15, श्लोक 13, प्रभु का भय मानो बुद्धि की शिक्षा है, सम्मान से पहले नम्रता आती है। यहाँ भी यही बात समान है, प्रभु का भय नम्रता के समान है। तो फिर जैसा कि हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन यहाँ यह बहुत स्पष्ट है। नीतिवचन 15:33, प्रभु का भय शिक्षा और बुद्धि है और आदर से पहले नम्रता आती है। और इसलिए यहाँ नम्रता प्रभु के भय के समान है। अब परमेश्वर का भय एक और प्रकार का गुण है। नीतिवचन 13:13, जो वचन का तिरस्कार करता है वह अपने ऊपर विनाश लाता है, परंतु जो श्रद्धा करता है वह श्रद्धा कहता है, लेकिन वास्तव में भय या आज्ञा पालन शब्द है। शायद श्रद्धा करता है, शायद वह इसे भूल जाता है, यहाँ शायद इसका अर्थ आज्ञाकारिता है। जो आज्ञा का आदर करता है, भय मानता है या आज्ञा का पालन करता है, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। और फिर वास्तव में अध्याय 14 के श्लोक 26 और 27 में आपको एक कहावत जोड़ी मिलती है। दरअसल मैंने नीतिवचन में कई जगहों पर देखा है और देखा है कि ऐसी सैकड़ों कहावतें हैं जहां कहावतों को एक साथ जोड़ा गया है। और बहुत से लोग कहते हैं कि नीतिवचन 10 और उसके बाद की कहावतें बेतरतीब ढंग से एक साथ मिलाकर बनाई गई हैं। इन कहावतों में कोई क्रम नहीं है। और फिर भी यहाँ हम पाते हैं कि लगभग 124 जोड़े ऐसे हैं जहाँ ये कहावतें जोड़ी गई हैं। आपने मेरा व्याख्यान देखा होगा, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, कहीं ऐसा न हो कि वह अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ठहरे। ठीक है, और अगला श्लोक कहता है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, कहीं ऐसा न हो कि वह अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ठहरे और ऐसा न हो कि तुम उसके जैसे बन जाओ। ठीक है, पहली बात यह है कि मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उसके जैसे बन जाओ। नीतिवचन 26:4, 26:5 कहता है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, कहीं ऐसा न हो कि वह अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ठहरे। जाहिर है ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और ऐसी कई जोड़ियां हैं। खैर, एक जोड़ी है, कहावत है ईश्वर के भय की जोड़ी। यहां नीतिवचन अध्याय 14 पद 26 और 27 दिए गए हैं। प्रभु के भय से दृढ़ भरोसा होता है और उसके बच्चों को शरण मिलती है। पद 27, प्रभु का भय जीवन का सोता है। ध्यान दीजिए कि यह जीवन के स्रोत के साथ ईश्वर के भय का कैसे रूपक प्रस्तुत करता है। यह एक प्रकार का रूपक है जिससे व्यक्ति मृत्यु के फंदों से दूर हो सकता है। तो यहाँ दंड का भय, मृत्यु का भय आप जानते हैं। नीतिवचन अध्याय 29 पद 25 देखें। मनुष्य का भय फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह सुरक्षित रहता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि मनुष्य के भय और प्रभु पर भरोसे के बीच क्या अंतर है। और प्रभु पर भरोसा, आप कह सकते हैं, मनुष्य का भय फंदा बन जाता है, लेकिन जो प्रभु का भय मानता है वह सुरक्षित रहता है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा और भय, आप जानते हैं, हम इन दोनों को समानांतर मान सकते हैं। नीतिवचन अध्याय 10 श्लोक 27। प्रभु का भय जीवन को बढ़ाता है, परंतु दुष्टों के जीवन के वर्ष कम हो जाते हैं। यहाँ प्रभु का भय जीवन को बढ़ाता है, परंतु दुष्टों के जीवन के वर्ष कम हो जाते हैं। दुष्ट को आमतौर पर दुष्ट और धर्मी के समान या विपरीत रूप से समान माना जाता है, और ऐसा कम से कम 100 बार होता है। नीतिवचन की किताब में दुष्ट और धर्मी, धर्मी और दुष्ट, दुष्ट और धर्मी के बारे में लिखा है। यहाँ लिखा है कि प्रभु का भय मानने से जीवन बढ़ता है। तो यहाँ प्रभु का भय धर्मी लोगों के लिए एक प्रकार का पर्यायवाची है। जो कोई धर्म से चलता है वह प्रभु का भय मानता है। तो प्रभु का भय क्या है? यही धर्म के मार्ग पर चलना है। लेकिन जो अपनी चालों में कुटिल है वह उसका तिरस्कार करता है। ठीक है, अब यह दिलचस्प है। अब हम यशायाह की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि यह एक दिलचस्प अध्याय है और यशायाह अध्याय 11 पद 2 और उसके बाद के अध्यायों में परमेश्वर के भय का कैसे प्रयोग किया गया है। मसीहाई राजा की बात करें तो दाऊद के वंश यिशै के ठूंठ से एक अंकुर फूटेगा और उसकी जड़ से एक शाखा फल देगी, और प्रभु का आत्मा उस पर छाया करेगा। यह मसीहाई राजा आने वाला था, यशाया अध्याय 11। और प्रभु का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा उस पर छाया करेगा। फिर से, क्या आप बुद्धि लेते हैं? सलाह और पराक्रम की भावना, ज्ञान की भावना और प्रभु का भय। फिर से, ज्ञान, प्रभु का भय एक तरह से समानार्थी समानता की तरह, और उसका आनंद प्रभु के भय में होगा। फिर से, दंड वगैरह के भय से नहीं, बल्कि एक सकारात्मक अर्थ में, किसमें? प्रभु की आज्ञाकारिता में। और इसलिए यह आज्ञाकारिता वगैरह की बात कर रहा है। वह आंखों देखी बात से न्याय नहीं करेगा, नहीं कानों सुनी बात से झगड़ों का फैसला करेगा, बल्कि वह धर्म से गरीबों का न्याय करेगा और पृथ्वी के नम्र लोगों के लिए न्याय का फैसला करेगा। इसलिए अब एक मसीहाई राजा के रूप में वह प्रभु का भय मानता है, और इसी कारण वह गरीबों और जरूरतमंदों को न्याय देता है। और वहां स्वयं मसीहाई राजा प्रभु के मार्गों का पालन करने और परमेश्वर के ज्ञान के भाव से परमेश्वर का भय मानते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से गुजरता है। परमेश्वर का भय अन्य प्रकार नीतिवचन 24:21 उनमें से एक था जिसने मुझे इस विषय पर कुछ हद तक आंखें खोल दी। मूलतः नीतिवचन 24:21 कहता है, हे मेरे पुत्र, प्रभु और राजा का भय मान, प्रभु और राजा का भय मान, और जो लोग ऐसा नहीं करते उनके साथ न हो, क्योंकि उन पर अचानक विपत्ति आ पड़ेगी, प्रभु और राजा पर। दूसरे शब्दों में, राजा और ईश्वर हर तरह की ऐसी हरकतें कर सकते हैं जिन पर तुम्हारा कोई बस नहीं, तुम लाचार हो, इसलिए उनसे डरो। और कौन जानता है कि उन दोनों से क्या बर्बादी होगी? तो आपको ईश्वर और राजा से डरना चाहिए, और यह बहुत दिलचस्प है। और राजाओं को हमने दूसरी जगहों से सीखा है, राजाओं को राजाओं के राजा से डरना चाहिए। और इसलिए डर की इस धारणा का, मुझे नहीं पता, एक दिलचस्प संबंध सामने आ रहा है। डर की इस धारणा और उस तरह के अधिकार, डर और भरोसे वाले व्यक्ति के बीच, हम पहले भी इससे गुजर चुके हैं। हाँ, अब क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति सोचे, ठीक है, अगर आप नीतिवचन की किताब में, यह एक तरह का ओपस ऑपरेटम है। दूसरे शब्दों में, आप ऐसा करते हैं और यह परिणाम होगा, और इसलिए आपको परमेश्वर से ये वादे मिले हैं। और जैसा कि हमने दूसरी जगहों पर कहा है, नीतिवचन वादे नहीं होते। यह आपके दिमाग में बिठाने लायक बहुत बड़ी बात है। कहावते वादे नहीं होती, कहावते वादे नहीं होती। तो फिर आपको पूछना ही होगा कि कहावत क्या होती है, और इस पर हमारे पास एक पूरा वीडियो लेक्चर है। कहावत क्या होती है? कहावत कोई वादा नहीं होती, लेकिन कहावत क्या है? यूं ही खारिज मत करिए। कुछ लोग नीतिवचन की किताब को खारिज कर देते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, नीतिवचन कोई वादा नहीं है, और यह आप जानते हैं, नीतिवचन को कम करके यह कहने का एक तरीका है कि ठीक है, यह ईश्वर का कोई वादा नहीं है 100%। और फिर वे कहते हैं, ठीक है, नीतिवचनों का सत्य तक पहुंचने का अपना तरीका होता है। ठीक वैसे ही जैसे ऐतिहासिक पुस्तकों में सत्य तक पहुंचने का अपना तरीका होता है, भजन संहिता में भी, और वैसे भी नीतिवचन में भी, आलसी हाथ गरीबी का कारण बनता है। आलसी हाथ गरीबी का कारण बनता है, लेकिन मेहनती का हाथ ही धनवान बनाता है। इसलिए लोग कहते हैं, कर्म बनाम चरित्र, चरित्र ही परिणाम की ओर ले जाता है। और नीतिवचन का मूल आधार यही है कि चरित्र का परिणाम होता है। नीतिवचन की लगभग सभी पुस्तकों का मूल सिद्धांत यही है, चरित्र ही परिणाम की ओर ले जाता है। चरित्र परिणाम की ओर ले जाता है। अब कुछ लोग कार्य परिणाम शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चरित्र परिणाम शब्द का प्रयोग करना बेहतर है। और फिर यह एक उदाहरण है। एक सुस्त हाथ गरीबी का कारण बनता है। सुस्त चरित्र सुस्त हाथ क्या पैदा करता है? गरीबी। ठीक है, लेकिन एक मेहनती हाथ, मेहनती का हाथ, वैसे मेहनती का हाथ और सुस्त हाथ दोनों स्वायत्तताएं हैं, है ना? यह आपके सुस्त हाथ की बात नहीं कर रहा है। मेरा एक हाथ ढीला है। वो हाथ ढीला है। ये वाला मेहनती है। मैं बाएं हाथ से काम करता हूं। यह हाथ मेहनती है। ठीक है। नहीं, यह ऐसा नहीं कह रहा है। हाथ एक विकल्प है, व्यक्ति के लिए एक स्वायत्तता। आलसी व्यक्ति का हाथ और मेहनती व्यक्ति का हाथ मेहनती व्यक्ति को अमीर बनाता है। तो क्या यह नीतिवचन की गारंटी है? जानते हैं, यह एक क्रियाविधि है। यह ठीक वैसा ही है जैसे ईश्वर ने इसमें लघुगणक लॉगरिदम डाला हो। लघुगणक मूलतः इसी तरह दुनिया चलती है, और फिर वह पीछे हट जाता है और दुनिया को यूं ही चलने देता है। नहीं नहीं नहीं, भगवान बार बार यही बात दोहराते हैं। हमें उससे क्यों डरना चाहिए? अगर वह बस एक बड़ी मशीन है तो जैसा कि आप जानते हैं, कर्म वही करेगा जो कर्म करेगा। नहीं नहीं, ईश्वर के बारे में हमारा मानना है कि वह व्यक्तिगत है, और इसीलिए नीतिवचन की किताब में भी कहा गया है कि मनुष्य का मन उसके मार्ग की योजना बनाता है। आप अपने मार्ग की योजना बना सकते हैं, बुद्धिमानी से निर्णय ले सकते हैं और ज्ञानपूर्वक चुनाव कर सकते हैं, लेकिन परिणामों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। परिणामों को कौन नियंत्रित करता है? परिणाम ईश्वर द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसलिए उनसे डरना जरूरी है। ईश्वर का भय ही ज्ञान की शुरुआत है, और बुद्धि का यह मूल कदम चरित्र या कर्म का परिणाम है। इन परिणामों को कौन नियंत्रित करता है? ईश्वर ही है, और यह कोई यांत्रिक बात नहीं है कि ऐसा करो और ऐसा परिणाम आएगा। नहीं, यहां लिखा है, मनुष्य का मन उसके मार्ग की योजना बनाता है, परंतु प्रभु उसके कदमों को स्थिर करता है। परमेश्वर चरित्र और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है, वही परिणाम देता है, और इसलिए वही है जिससे डरना चाहिए। ठीक है, नीतिवचन 21:30-31, ये भी इसी तरह की बातें हैं। नीतिवचन 21:30-31, कोई भी बुद्धि, कोई भी समझ, कोई भी युक्ति प्रभु के विरुद्ध काम नहीं आ सकती। दूसरे शब्दों में आप यूं ही यह नहीं कह सकते कि मैं बुद्धि जानता हूं, मैं ज्ञान वगैरह जानता हूं, इसलिए मैं यह कर सकता हूं, प्रभु के विरुद्ध काम आ सकता हूं। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है, लेकिन जीत प्रभु की होती है, और इसलिए प्रभु का भय मानना चाहिए। अब हम प्रभु के भय के बारे में सोचने के विभिन्न तरीकों के इन रूपकात्मक तरीकों को चित्रित करना चाहते हैं, और मैं इसे एक साथ सभी को एक साथ चित्रित करना चाहता हूं, और फिर यहां एक निष्कर्ष निकालना चाहता हूं और इसे एक निष्कर्ष के रूप में समेटना चाहता हूं। ठीक है, और मुझे इस पर लिखे अपने शोधपत्र से कुछ पढ़ने दीजिए। हम भावनात्मक शाब्दिक भय से दूर जा रहे हैं, शायद उत्पत्ति 31:42 में सबसे स्पष्ट रूप से रूपकात्मक प्रयोग, जहां याकूब लाबान को समझाता है, जैसा कि हमने देखा, क्योंकि परमेश्वर पिता अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भय मेरे मन में नहीं रहा है। इसहाक का भय एक स्पष्ट रूपकात्मक प्रयोग है। प्रतिक्रिया है ईश्वर के प्रति ईश्वर का भय।
ठीक है, ईश्वर का भय।
ठीक है, कानूनी सामग्री में इसके अर्थ को रूपकात्मक रूप से निरंतर विस्तारित किया गया है।
दूसरे शब्दों में इस तरह से देखें तो कानूनी सामग्री अध्यादेश के लिए है।
कभी कभी ईश्वर का भय अध्यादेशों, विधियों, कानूनों और आदेशों को संदर्भित करता है।
ईश्वर के भय का प्रयोग आज्ञाकारिता के स्थान पर और कार्य के लिए एक प्रेरणा के रूप में भी किया जाता है।
कर्म आज्ञाकारिता है।
उद्देश्य प्रभु के भय का भय है।
और प्रभु का भय मूलतः सामान्य नैतिकता की बात करने का एक तरीका है, यहाँ तक कि बाहर के लोगों को भी ईश्वर भय के इस समूह के रूप में जाना जाएगा, जो अक्सर इसराइल के साथ वाचा से बाहर होते हैं।
बुद्धि में प्रभु का भय बुद्धि, ज्ञान, समझ और धार्मिकता, चरित्र का स्रोत और सद्गुण का स्रोत जैसे अन्य शब्दों का प्रतिनिधि हो सकता है।
हालांकि नीतिवचन में दिए गए ये उदाहरण जिनमें परमेश्वर का भय एक भावना है, ऐसे ही हैं।
यह शब्द बाद में पारंपरिक हो गया और ईश्वर भय वाले चरित्र समूह के रूप में जाने जाने वाले लोगों के समूह को निर्दिष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा।
इस प्रकार मेटोनिमी ईश्वर के भय में किसी मूल अर्थ के विभिन्न विविध अर्थों में विस्तार को देखने का एक उपयोगी साधन प्रदान करता है।
यह बिना किसी अपमानजनक पर्यायवाची शब्द में बदले संबंध बनाने का एक उपयुक्त तरीका प्रदान करता है।
ईश्वर के भय को उसकी विभिन्न जटिलताओं, चाहे वह ज्ञान हो, आज्ञाकारिता हो या आज्ञाएं, के पर्यायवाची तक सीमित करने का कोई उपाय नहीं है।
यह सब बातों को एक साथ मिला देने जैसा होगा, यह जानते हुए कि हम इन सभी अर्थों को, जिनकी हमने खोज की है, एक साथ नहीं ले सकते और यह नहीं कह सकते कि जब भी हम ईश्वर का भय पढ़ते हैं तो इसका अर्थ ये सभी बातें हैं।
इसका उत्तर है नहीं, आपको संदर्भ देखना होगा और संदर्भ ही अंतर बताता है।
अब हमारे पास इनमें से कई अर्थों को अलग करने के लिए श्रेणियां हैं और प्रभु के भय के बारे में ध्यान देने योग्य बातें हैं।
नहीं, भय की भावना को इन सभी चीजों के लिए एक सार्वभौमिक पृष्ठभूमि के रूप में कम करने वाली सोच पर जोर दिया जाना चाहिए।
भय था, आतंक था, भय था।
हाँ, हमने इस बारे में बात की थी, लेकिन इसका मतलब इन सब बातों से नहीं निकाला जाना चाहिए।
कभी कभी इसका मतलब सिर्फ प्रभु का कोई कानून या नियम होता है।
इसलिए आपको सावधान रहना होगा और चीजों को इस तरह आपस में नहीं मिलाना होगा।
तो अब मैं प्रस्तुत करता हूँ और मैं यहाँ एक तरह का रूपक, एक रूपक प्रयोग करने जा रहा हूँ।
जैसा कि हमने कहा, वह एक पेड़ की तरह होगा।
यह विभिन्न श्रेणियों में छलांग लगा रहा है।
वह प्रभु मेरा चरवाहा है।
ठीक है, प्रभु एक द्वार है।
ठीक है, एक द्वार जो भेड़ों को अंदर आने देता है।
ठीक है, प्रभु एक चट्टान है।
ठीक है, ये रूपक हैं।
और इस बार हम रूपक प्रयोग की बात कर रहे हैं।
मेहनती का हाथ प्रभु का भय यानी आज्ञाकारिता और श्रद्धा यानी भय और खौफ।
ठीक है, तो आप रूपक और लक्षणालंकार को एक साथ रख सकते हैं।
और उन्होंने वास्तव में एक शब्द गढ़ा है जिसे मेटाफ्टोनॉमी कहते हैं।
ठीक है, तो यह रूपक और लक्षणालंकार का मिश्रण है।
और इसी तरह मैं इस चार्ट को समाप्त करना चाहता हूं जिसे हमने बनाया है,
और यहां इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने का अन्वेषण करें।
आप चार्ट पर देखेंगे कि यह दिव्य राजा से शुरू होता है, ईश्वर राजा है, या यूं कहें कि मानव राजा से भी डरना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कि यह भय और राजा से जुड़ा हुआ है।
तो दिव्य राजा, लेकिन दिव्य राजा एक रूपक है।
परमेश्वर राजा है, यह एक रूपक है जो परमेश्वर के बारे में बात करता है, जैसे परमेश्वर एक चरवाहा है।
वैसे मेरे शिक्षक डॉन फाउलर के अनुसार भजन 23 में चरवाहा मूलतः यही कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, अर्थात प्रभु मेरा राजा है। और अगर आप इसे प्रभु मेरा राजा है पढ़े तो पूरा भजन एक साथ जुड़ जाता है। अन्यथा यहाँ दो बातें चल रही हैं जो हमेशा नहीं होती, भजन संहिता में एक बदलाव है। अंत में शाही भोज जंगल में अपनी भेड़ों के साथ चरवाहे के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए दो रूपक विकसित हो रहे हैं। अगर आप इसे इस तरह लें, प्रभु मेरे राजा हैं, तो पूरा भजन एक सुंदर बात में समाहित हो जाता है, जैसे कि परमेश्वर राजा हैं। तो दिव्य राजा और भजन संहिता में राजा महान है। भजन संहिता में आपके पास भजन है, आपके पास राजा है, आपके पास भजनकार है जो आमतौर पर मुसीबत में होता है, और आपके पास शत्रु भी है। और इसलिए भजन संहिता की पुस्तक में ये तीन बड़ी घटनाएं हैं, दिव्य राजा भजनकार जो पीड़ित है, और शत्रु जो मूलतः भजनकार पर आक्रमण कर रहा है और शत्रु से निपटने के लिए परमेश्वर से सहायता की याचना कर रहा है। लेकिन यह एक दिव्य राजा था, और फिर दिव्य राजा के माध्यम से आपको ईश्वरीय कार्य देखने को मिलते हैं। ईश्वरीय कार्य तब होते हैं जब परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में उसके सामने प्रकट होते हैं और वह भयभीत हो जाता है। ठीक है, ईश्वर दिव्य राजा है, न्याय का वितरक है। जब सुलेमान से पूछा गया तो उसने कहा, तुम ईश्वर से कुछ भी मांग सकते हो और वह तुम्हें दे देगा। उसने पूछा, मुझे बताओ कि सही और गलत में कैसे फर्क किया जाए। और इसीलिए दरअसल इसराइल के राजाओं को, उस समय तक के सभी राजाओं को एक युद्ध जीतना ही होता है। तो शाऊल बाहर जाता है तो वह सबसे पहले क्या करता है? उसे एक युद्ध जीतना ही होता है। एक शमूएल 15 में दाऊद का अभिषेक किया गया है। वह सबसे पहले क्या करता है? उसे गोलियत से लड़ना है। वह युद्ध जीतता है। तो राजा सबसे पहले वह युद्ध जीतता है। राजा दाऊद शाऊल युद्ध में जीत हासिल करता है। सुलेमान श्लोमो शालोम का पुरुष, शांति का पुरुष सुलेमान बाहर आता है और कहता है, नहीं, मैं न्याय चाहता हूँ, मैं न्याय को समझना चाहता हूँ। और फिर न्याय के तौर पर सुलेमान की लड़ाई जीतने की बजाय, नहीं, सुलेमान की बुद्धि की लड़ाई जीत रही है, जहाँ दो औरतें अपना बच्चा लेकर आईं, एक मर गई, उनमें से एक मर गई, और उन्होंने बच्चे वगैरह बदलने की कोशिश की। और इसलिए औरतें समझने की कोशिश कर रही हैं, और उसने कहा सुलेमान को ही इसका हल निकालना है। यह बुद्धि की जीत है, लड़ाई की नहीं, युद्ध के मैदान में। और इसलिए उसकी बुद्धिमत्ता की जीत यही है कि वह बच्चे को दो टुकड़ों में काट देता है, और फिर उसे पता चल जाता है कि असल में कौन सी माँ बच्चे की माँ है। खैर, मैं तो बस यही कह रहा हूँ। इसलिए न्याय यानी वितरणात्मक न्याय राजा के प्रमुख कार्यों में से एक है। राजा एक पंथ का नेता होता है। दाऊद संदूक यरूशलेम लाता है और प्रभु के सामने पूरी शक्ति से नाचता है। वह एक पंथ का नेता है, एक कानून निर्माता। राजा कानून बनाते हैं, और फिर वह एक बुद्धिमान ऋषि है। राजा ही हमें कहावतें देता है। ये यरूशलेम के दाऊद पुत्र सुलेमान की कहावतें हैं। ठीक है, तो बुद्धिमान राजा। अब दिव्य राजा द्वारा निभाई जाने वाली इन भूमिकाओं से आपको ईश्वर का भय होता है, और ईश्वर का भय फिर हमारे रूपकरूपकों में प्रकट होता है। इस प्रकार हमें दिव्य राजा का यह रूपक मिला। ठीक है, ईश्वर एक राजा है, इसका रूपक, और अब आपको यह रूपक मिल गया है। रूपक में ईश्वर की विभिन्न भूमिकाओं में ईश्वर के भय का क्या अर्थ है? तो इस चार्ट में आपको एक रूपक और एक लक्षणालंकार दोनों मिल गए हैं। और खैर, आपको ईश्वरीय स्वयंसिद्ध पर पवित्र भय मिल गया है। ईश्वर जलती हुई झाड़ी में या लाल सागर को पार करते समय ईश्वरीय दर्शन में प्रकट होता है। आपको पवित्र भय मिल गया है। वे परमेश्वर की अद्भुत शक्ति देखते हैं। सीनै पर्वत हिलता है और लोग भयभीत हो जाते हैं। परमेश्वर अद्भुत है। वह अद्भुत है। वह आश्चर्यजनक है। वह शानदार है। वह महान है। इतने महान कि हमारा दिमाग उन्हें समझ ही नहीं पाता और हम नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक है, पवित्र भय रुडोल्फ ओटो, रहस्य परम सत्य पूर्णतः अन्य। हम परमेश्वर की पवित्रता को समझ पाते हैं और यह डरावना है, लेकिन साथ ही यह दिलचस्प भी है। ठीक है, भय का न्याय। राजा सक्षम है, दिव्य राजा न्याय वितरित करने में सक्षम है और दंड के रूप में न्याय, और इसलिए सजा का डर सजा का आतंक हो सकता है। याद रखना, मेरे पिता एक मेंढक हैं। बस वहां सजा का डर है और इसलिए वहां ईश्वर की भी यही भूमिका है। और ईश्वर का भय कभी कभी दंड का भय भी हो सकता है, जैसा कि हमने बताया। श्रद्धा और आराधना। ईश्वर का भय है, पवित्र स्थान का भय है, उसके प्रति श्रद्धा और आराधना है। सिर्फ आदर और श्रद्धा ही नहीं, बल्कि ईश्वर की आराधना में डूब जाना भी है। ईश्वर का भय ही आराधना है। और फिर आज्ञाकारिता का संबंध आज्ञाओं से जुड़ गया। परमेश्वर के भय को परमेश्वर के विधानों, नियमों और आज्ञाओं के स्थान पर, न कि उनके स्थानापन्न के रूप में, एक रूपक के रूप में प्रयोग किया गया। और भजन 119, भजन 19 और अन्य भजन आज्ञाकारिता की ओर ले जाते हैं। इसलिए ईश्वर का भय मानने वाला ईश्वर के नियमों का पालन करने वाला होता है। और बुद्धि का अक्सर सद्गुण से संबंध होता है, और यही चरित्र है। और चरित्र बुराई से दूर जाने के अलावा, दूसरे शब्दों में, ईश्वर का भय यानी बुराई से घृणा। ईश्वर का भय बुराई से घृणा है। लेकिन यहां जो ज्ञान है, ईश्वर का भय वही ज्ञान है। ऐसा लगता है कि यह चरित्र और परिणाम के बीच का संबंध है। ईश्वर ही वह है जो चरित्र को परिणामों से जोड़ता है। अय्यूब के मामले में यह काफी दिलचस्प है। नीतिवचन इस मायने में भी दिलचस्प है कि परमेश्वर चरित्र को परिणाम से जोड़ता है, और इसलिए यह हमें परमेश्वर के प्रति नम्रता, परमेश्वर का भय इस विनम्रता के साथ देता है कि सही निर्णय लेने के लिए हमें उसी की आवश्यकता है। धार्मिकता। हमें बुद्धिमानी से फैसले लेने की जरूरत है। हमें सोच समझकर फैसले लेने की जरूरत है, लेकिन नतीजे पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और यही ईश्वर का भय है। फिर वही नियंत्रण करता है। और फिर अंत में दाईं ओर आपको एक समूह दिखाई देता है, ये ईश्वर से डरने वाले लोग हैं, और ईश्वर से डरने वाले लोग सामान्य नैतिकता हैं, जो इसराइल के बाहर के किसी व्यक्ति की तरह परमेश्वर का भय मानता है, अबीमेलेक की तरह परमेश्वर का भय मानता है, जिसका जिक्र पौलुस ने भी किया है। और मुझे नहीं लगता कि हमने इसे पढ़ा है, लेकिन प्रेरितों के काम में जब वह इन परमेश्वर भय का उल्लेख करता है, और वह मूल रूप से कह रहा है, हे यहूदियों और परमेश्वर भय रखने वालों, ये वे अन्य जाति हैं जिनमें सामान्य नैतिकता वगैरह है, और वे परमेश्वर का भय मानते हैं। अब निष्कर्ष में मैं टोजर की टिप्पणी के बारे में स्पष्ट होना चाहता हूँ कि किसी धर्मशास्त्रीय संरचना को केवल परिभाषित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन के अर्थ और अनुभव को जानना भी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, आप जीवन में ईश्वर के भय और उसके इन सभी पहलुओं का अनुभव कैसे करते हैं? एक उदाहरण जो मैंने ईश्वर के भय को शायद सबसे गहराई से सीखा, वह मेरे बेटे के साथ था। मेरा बेटा 2010 से 2011 के दौर में एक मरीन था और उसे इराक भेज दिया गया, और यह एक बुरा अनुभव था। यह मुश्किल है, शायद मेरे जीवन की सबसे मुश्किल बात। मुझे इराक भेजा गया था और वहां समस्याएं थीं। वे उतने बुरे नहीं थे। वह इराकियों का सम्मान नहीं करता था। वे ज्यादा योद्धा नहीं थे। वह एक योद्धा की तलाश में था। वह एक हट्टाकट्टा आदमी है, लगभग 6'3" लंबा, 240 पाउंड वजन का और एक मजबूत मरीन। वह अफगानिस्तान पहुंचा और अचानक उसने कहा, इराक में तो योद्धा नहीं थे, लेकिन हम अफगानिस्तान पहुंच गए। उन्होंने कहा, यार ये बच्चे तो योद्धा हैं, और ये ऐसे योद्धा थे जैसे तुमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इन्हें बचपन से ही प्रशिक्षित किया गया था और ये मरीन्स की गतिविधियों की नकल करना सीखते थे ताकि उन्हें रोक सकें और मरीन्स के पैटर्न के अनुसार इन लोगों को पहचान सकें। ये लोग बहुत चतुर और होशियार थे। खैर, वहां उसका बहुत बुरा समय था। हमारा भी वहां बहुत बुरा समय था और मैंने कुछ सीखा। मुझे लगता है कि यह शायद मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। हमारे परिवार में बहुत कुछ चल रहा है। हमारे 4 बच्चे हैं, और अगर आपको पता हो, अगर आपके किशोर बच्चे हैं तो उन सभी के अपने अपने उतार चढ़ाव रहे होंगे, और यह अच्छा रहा है। हम अपने सभी बच्चों से प्यार करते हैं और हमारे बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अब जब वे सभी बड़े हो गए हैं, क्राउन मेरी बेटी अब 40 से ज्यादा की हो गई है। खैर, वो अफगानिस्तान में है। वो फोन करके कहता है, मैं तुम्हें 28 दिन तक फोन नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि ऐसा ही था, वो वही होगा जिसे आउट ऑफ द वायर कहते हैं। वो एक पैदल सैनिक था, यानी वो एक बूट था, और वो बाहर था और उन्हें हर दिन गोलियां खानी पड़ती थीं। और इसलिए आप कभी नहीं जानते। मेरा मतलब है, वह आपके सिर से 6 इंच दूर से आने वाली गोली और 3 फीट दूर से आने वाली गोली की आवाज के बीच का अंतर बता सकता है। जाहिर है, दोनों की आवाज अलग अलग होती है, और वह आपको वह आवाज बता सकता है क्योंकि उसने बताया था कि गोलियां इतनी पास से आती हैं। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने बेटे की जिंदगी के लिए दुआ कर रहा था और भगवान से, शुक्र है भगवान से, उसे बचा लेने की भीख मांग रहा था। और मुझे अपनी बेबसी का एहसास हुआ, और यह बहुत ही विनम्र करने वाला था क्योंकि आपको एहसास होता है कि मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। एक पिता की सबसे बड़ी भूमिकाओं में से एक है अपने बच्चों की रक्षा करना। मैं अपने बच्चों को एक पागल कुत्ते, एक रोटवीलर कुत्ते से बचा सकता हूँ। मैं अपने बच्चे को रोटवीलर से बचा सकता हूँ। मैं अपने बेटे की रक्षा तब नहीं कर सकता जब वह 2000 मील दूर अफगानिस्तान में हो और लोग उस पर गोलियां चला रहे हों। और इस तरह बेबसी की भावना ने मुझे ईश्वर से डरने पर मजबूर कर दिया, और मुझे एहसास हुआ कि केवल ईश्वर ही इन परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है, और यह निर्भरता और विश्वास की ओर ले जाता है। ईश्वर का भय यह है कि आपको एहसास होता है कि वह नियंत्रण में है, और आप कहते हैं, ठीक है, बस उस पर भरोसा करो, और ये आसान है। नहीं, ये मुश्किल है जब आपको पता ही न हो, क्योंकि मेरे बेटे के कई दोस्त मारे गए, अपंग हो गए, बम से उड़ा दिए गए, आंशिक रूप से उड़ा दिए गए और 100 फीट ऊपर हवा में फेंक दिए गए, और अब तो वो पहचान भी नहीं पाते कि वो कौन है। खैर, इसमें बहुत कुछ है। तो डर और फिर डर ही आज्ञाकारिता, स्तुति और आराधना की ओर ले जाता है, और इसलिए मूलतः असहायता की उस भावना का यह आतंक विनम्रता की भावना लाता है और यह एहसास दिलाता है कि यह ब्रह्मांड मेरे बारे में नहीं है। ईश्वर का भय ही वह स्थान है जहां अंत आज्ञाकारिता, आराधना और स्तुति की ओर ले जाता है। इसलिए ईश्वर के प्रति अपने भय को बढ़ाने के लिए भय के क्षणों और इस प्रकार की चीजों को चुनें। ये एक अच्छी बात हो सकती है। फिलहाल ये डरावने और बहुत मुश्किल हैं, लेकिन अंततः ये ईश्वर के भय की ओर ले जाते हैं। इसलिए मैं इसे यहीं समाप्त करना चाहूंगा और बस यही कामना करूंगा कि आप ईश्वर के भय को समझें, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, उसके वचन का पालन करो और अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करो। यह भी विनम्रता के भाव से भय से जुड़ा है, न कि अभिमान, अहंकार या बुराई से घृणा से। हाँ, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, बुराई से घृणा करो, प्रभु से प्रेम करो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो, उनकी आराधना करो और उनकी सेवा करो। और फिर जब तुम प्रत्येक संदर्भ और शास्त्र में जाओगे और इस बात को पढ़ोगे ईश्वर का भय, तो तुम्हें एहसास होगा कि यह अनेक है, इसके कई पहलू हैं। इन सबको एक साथ न मिलाएं, इन्हें अलग अलग रखें। इसमें मदद के लिए संदर्भ का इस्तेमाल करें, लेकिन परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, यही मनुष्य का कर्तव्य है। धन्यवाद।